हरे हरे,
राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के बार कृपा से आहूजा परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत के साथ में छठे दिन के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य के विषय में शास्त्रों का सार के भगवान श्री कृष्ण जिसको स्वयं भगवान कहते हैं, जो सारे अवतारों का स्रोत है, उद्गम स्थान है, जो सदा नव यौवन रहते हैं, सदा ही किशोर अवस्था में रहते हैं, नित्य किशोर नटवर चलते हैं तो लगता है नृत्य कर रहे हैं, गोप वेश धर सदा ही गाय चराने वाले गोप के वेश में, हाथ में लकुटी होती है, सर के ऊपर पगड़ी होती है, मोर पंख लगा होता है, वेणु कर और हाथ में हमेशा बांसुरी होती है। ये जो स्वयं भगवान का स्वरूप है, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 27वें मन्वंतर की 28वीं चतुर्युगी में अपने पार्षदों को साथ में लेकर ब्रज में प्रकट होकर प्रेम का प्रदर्शन करके सबको निमंत्रण देते हैं। और इस समय जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय हो गया था, जो नेम से उनको आने का समय था, उसी वक्त पृथ्वी के पुकारने के ऊपर, ब्रह्मा जी की प्रार्थना के ऊपर भगवान अवतार भी लेकर आए। वो वसुदेव और देवकी के यहाँ चतुर्भुज रूप में आए और वसुदेव को प्रेरणा दी कि मुझे नंद गोकुल में ले चलो, और भगवान उसको लाए, भगवान को वसुदेव जी लाए। और जो यशोदा के वहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए थे एक बालिका के साथ, उस भगवान में, उस नंद नंदन कृष्ण में, यशोदा नंदन कृष्ण में वसुदेव कृष्ण मिल गए। और फिर कल यहाँ कथा को विराम दिया था कि नंद के घर में बालक के रोने का आवाज सुन के सुनंदा नंद की बहन ने ये नंद बाबा को बधाई दी और नंद बाबा आनंद में आनंदित हो गए। और दूसरे दिन सुबह आज हम कथा शुरू कर रहे हैं, दूसरे दिन सुबह नंद उत्सव मनाया गया। नंद उत्सव का मतलब है कि नंद के घर में बहुत समय के बाद सबको ये आशा थी कि संतान होगा, तो सभी तैयारी कर रहे थे बहुत बड़े उत्सव की। नए नए कपड़े सबने सिलाए थे लेकिन पहन नहीं रहे थे जब तक बालक न हो जाए। तो ये 18 श्लोकों में नंद उत्सव का वर्णन है। पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंदस्तु आत्मजा उत्पन्ने। नंद के घर में आत्मजा कहते हैं बेटे को, पुत्र का जैसे ही प्रकट हुआ, ऐसे नहीं लिखाया कि जन्म दिया, उत्पन्ने प्रकट हुए, जैसे ही नंद के घर में उनके पुत्र प्रकट हुए तो हुआ क्या, जात अहलादो, उनके घर में अहलाद हो गया। अहलाद का मतलब है आनंद हो गया, अहलाद का मतलब खुशियां हो गई। तो नंद कैसे है, महामनाह। नंद कैसे हैं, बड़े महामना, बड़े दिल वाले हैं। महामन उसको कहते हैं जिसके घर में मानो के 1000 रुपये हो और 1,00,000 रुपये का दिल हो जिसका खर्च करने का, उसको कहते हैं महामना। तो नंद बाबा ऐसे महामना है, आहूय विप्राम वेद ज्ञान, अपने घर में वेद जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। स्नात सुचिर अलंकृत, स्नात का मतलब स्नान किया, सुचि का मतलब पवित्र किया, अलंकृत का मतलब श्रृंगार किया। वाचेत्वा स्वस्ति अयनम, और स्वस्ति वाचन कराया बच्चे का। जात कर्म आत्म जस्य वही, अपने बेटे का जात कर्म संस्कार कराया ब्राह्मणों से। जात कर्म संस्कार जन्म के समय होता है, जो बच्चे का माँ के साथ संबंध होते हैं नाड़े काटने के समय, जब तक नाड़ा नहीं कटता है तब तक सूतक नहीं लगता है, तो नाड़ा कटने के बाद सूतक लग जाता है, तो उस वक्त पूजा जो कराई जाती है वो पूजा कराई। कार्याम आसह विधिवत पितृ देव अर्चनम तथा, फिर विधिवत देव का पूजा कराया, पितरों का पूजा कराया। तो नंद बाबा ने घर में पहले तो विधि विधान से बालक के जन्म का कार्य किया। जात अहलादो, घर में आनंद आ गया, नंद के घर में आनंद आया और नंद बाबा ने इस तरीके से ये कार्य पूरा किया। फिर नंद बाबा ने क्या किया, धेनु नाम नियोतहा प्रदाता, 2 लाख गाय के 20 लाख गाय नंद बाबा ने दान कर दी। बहुत सुंदर वस्त्र उसके ऊपर ढककर, सींगों में सोना लगाकर, पांव के खुरु के ऊपर चांदी चढ़ाकर, पूछ में हीरे मोती डालकर, और दूध दहन दोहने के लिए बर्तन दे के छोटे से बछड़ों वाली दूध वाली गायों को दान किया। विप्रेभ्यो सम अलंकृत, ब्राह्मणों को बड़े अच्छी तरह से श्रृंगार कर गाय दान किया। तिलाद्रिम सप्तः, 7 तिल के बड़े बड़े पर्वत बनाए और उसको दान किया। उसके अंदर क्या रतन ओघा, उसके अंदर हीरे मोती माणक डाल दिए। बाहर से तिल दिख रहा था और अंदर में सोना चांदी हीरे मोती अंदर डाल दिए। 7 कुंभा 7 पानी जल के मटके भर के रखे, इसको कहते हैं कुंभ, ये जो जो पूजन करते हैं। अंबर आवृतम, कपड़ा उनके ऊपर ढका हुआ था और सुंदर सोने का मढ़ा हुआ, ये सब दान किया। तनंद बाबा ने अपने बालक के जन्म के समय उदारता से दान किया। और पहले घर में बधाई देने के लिए ग्वाल बाल गायों को लेकर आए। बड़ा जंगल में हम गैया चराने नहीं जाएंगे, आज हमारा एक नया ग्वाला आया है, हम उसके स्वागत के लिए नंद के घर चारों ओर से पहले गैया आ गई, ग्वाल बाल आ गए, और उसके बाद बूढ़े बूढ़े जो गोप थे बड़ी उम्र के, वो आज सज धज के आंखों में काजल डालकर, पगड़ी बांधकर और नए नए वस्त्र आभूषण पहनकर नंद बाबा के घर में बधाई देने के लिए आई। और फिर गोपियाँ सुंदर साड़ियाँ और पंचरंगा जो है लहंगा पहनकर, हाथ में नजर उतारने की सारी सामग्री और उपहार लेकर यशोदा मैया को बधाई देने के लिए आई कि आपके घर में बालक हुआ है, आपको बधाई हो। यशोदा मैया कहती है ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है, लेकिन बच्चे को छुपा के रख दे, बच्चे को किसी को देखने न दे। तो बच्चे का चरण को ही पहले जो आए थे देखने गोपियाँ, उन्होंने देखा और चरण देखने से ही वो भगवान को अपना हृदय दे चुकी थी। अरे यशोदा इसका मुख तो दिखाओ, बोला नजर लग जाए, अरे देखो तो सामान क्या लाइए, नजर उतारने का सामान ले आई है, ये बालक चिर जिए, हम इसको नजर उतारने का, देखो ये हल्दी है, ये तिल है, ये सब लाए हैं उतारने के लिए। और गोपियों ने इस तरीके से यशोदा मैया को बधाई दी। उसके बाद नन एक उत्सव होता है घर में होने वाला, उसको कहते हैं दही कांदो उत्सव। दही कांदो उत्सव का मतलब दही घी दूध और केसर उसमें मिलाकर और उसको अच्छी तरह से मिला के रंग करके एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। तो दही कांदो उत्सव की जैसे तैयारी शुरू कैसे हो, तैयार तो हो गया माल। बोला जब वृषभानु महाराज कीर्ति मैया जो राधा रानी की माता है, अभी राधा रानी इसके बाद प्रकट होंगी, वो उस वक्त में रावल में रहते थे और नंद बाबा उस वक्त में गोकुल में रहते थे, तो बहुत सुंदर दही कांदों का दूध का मटका, दही का मटका सर के ऊपर उठा के कीर्ति मैया वृषभानु अपने गोप समुदाय के साथ जब वहां आए तो नंद बाबा ने उठकर कीर्ति मैया के सर के ऊपर मटके को डंडा मारा और उसका अभिषेक हो गया, और जैसे वो दूध नीचे गिरा सब ने एक दूसरे के ऊपर दही दूध ऐसे उछालना शुरू किया और नंद के घर में जैसे दही का दूध का समुंदर हो गया। जब वो पूरे आंगन में ऐसे दूध दही का समुंदर बन गया तो बड़े बूढ़े ने कहा, नंद आज आपके घर में बालक का जन्म हुआ है, आप अब संकोच छोड़ो और बीच में नृत्य करो। तो नंद बाबा को उस दूध समुंदर के बीच में खड़ा कर दिया और एक बहुत बड़ा वो पटके का कपड़ा लेकर और नंद बाबा की कमर में बांधा, एक तरफ से रावल वाले एक तरफ से गोकुल वाले नंद बाबा को ऐसे चलाने लगे जैसे मंथन हो रहे हैं। और आज ये दूसरा खीर सागर का मंथन हो रहा है, लेकिन उस मंथन में विष निकला था, इस मंथन में नंद घर आनंद निकला है, श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ है, ये अद्भुत इसका दर्शन है। और नंद बाबा ने उदारता से इतनी गाय देने लगे, जो आए उसको गाय दे, और सारे देवता ब्राह्मणों का रूप धारण करके नंद उत्सव का दर्शन करने के लिए आए थे, शंकर जी भी आए थे, अपने नंदी को लाए और नंद बाबा को ऐसे आंखें बंद करके जो आए उसको गाय देते देखे, अपने नंदी बैल की पूछ पकड़ के खड़े हो गए कि कहीं ऐसा नहीं है कि मेरा बैल दान न दे दे, ऐसे देखे कहीं, और बोले ये भी ले जाओ। तो सब शंकर जी इस तरीके से अपने बैल को पकड़ के खड़े हैं और पार्वती मैया गणेश जी को छाती से चपका दिया कि ये हाथी घोड़ा दिया पाल की और ये कहीं मेरे बच्चे को छोटा हाथी समझ के दान न कर दे। इतना उदारता से नंद बाबा दान कर रहा था कि किसी को कुछ विचार नहीं रह गया। और नंद बाबा के दान का तो ऐसा अद्भुत वर्णन है कि जो नंद बाबा के घर से चांदी दान ले जा रहा था, किसी ने कहा नंद के घर से चांदी लाया है, उधर तो सोना मिल रहा है, वो चांदी उधर फेंक दिया और सोना लेके जा रहा था, और जो सोना लेके आ रहा है उसको बोला सोना क्यों लाया, हीरे मोती मिल रहे थे, वो सोना उधर फेंक दिया। तो न सारे ब्रज में कहीं चांदी कहीं सोना कहीं हीरे, मानो के लक्ष्मी ब्रज के अंदर कीड़ा कर रही थी कृष्ण के आने के ऊपर, वो वैकुंठ को छोड़ के ब्रज में आ गई थी। तो नंद बाबा के इस उत्सव के अंदर बड़े अद्भुत दही दूध को उछाला जा रहा है और दही दूध की धारा जमुना में बह के गई और दही दूध की धारा प्रयागराज तक, सारा जमुना जी जो है वो सफेद दूधमयी हो गई। और ये दही कांद वो उत्सव बड़ा हुआ बनंद बाबा के घर में। ये तो 18 श्लोक में बहुत सुंदर है, अब सबका पढ़ने का तो आज नहीं होगा। फिर इसके बाद लिखा है कि समय के साथ धरती पवित्र हो जाती है, स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, ऐसे बच्चे का जब वो संस्कार कराया जाता है तो वो पवित्र होता है, इसलिए बच्चे का उसने संस्कार कराया। तो नंद बाबा के घर में ये बहुत सुंदर उत्सव हुआ और उत्सव जैसे पूरा हुआ, अब एक बात लिखी है कि इतना बड़ा उत्सव हो रहा था, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। रोहिणी, इतना बड़ा उत्सव हो रहा था, बलराम जी की माता रोहिणी बाहर नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उनका पति वहां नहीं था। जब पति नहीं है तो पत्नी सुंदर श्रृंगार करके बाहर नहीं आती। तो नंद बाबा अंदर चले गए, जाके नंद बाबा ने कहा, नंद गोप अभिनंदन, उसका अभिनंदन किया कि हमारे घर में बच्चा कहां से होता, जब आपके चरण पड़े हैं तब हमारे घर में आज सुख हुआ है। यशोदा तो सूत की गृह में है, आप ही तो घर की मालकिन हो, आप ही नहीं चलोगी तो सब आया है, उनका स्वागत कौन करेगा। नंद बाबा रोहिणी को बहुत बड़ा अभिनंदन करके मना करके, दिव्य वास सरक, आप सुंदर वस्त्र पहन लो, सुंदर साड़ी पहन लो, वस्त्र आभूषण पहनो, कंठाभरण भूषिता, वो कंठ में मालाएं बालाएं पहनो, आप चल के घरे सारे घर का अब व्यवस्था को देखो। तो रोहिणी माता को नंद बाबा ने ले आए। अब सुखदेव महाराज कहते हैं, ततारभ्य नंदस्य वृज सर्व समृद्धिमान। नंद बाबा का वृंदावन इस वक्त समृद्धिमान हो गया, लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली होया। क्यों? हरेर निवासात्मा गुणई, क्योंकि साक्षात भगवान हरि वहां प्रकट हो गए। अभी आने वाले महीने में 9 तारीख को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य गौर पूर्णिमा का दिन है। उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं, जब से हमारे घर में ये गौर हरि का प्रकट्य हुआ है, घर में न धन धान्य की कमी है, न किसी खाद पदार्थ की कमी है, सब चीजें अपार मात्रा में घर में अपने आप लोग दे के जा रहे हैं। तो जहाँ भगवान आता है वहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहती है, वहाँ लक्ष्मी अपने आप आती है और सब चीजें। तो यहाँ लिखा है हरि निवास आत्मा, भगवान हरि वहां जहाँ रह रहे हैं वहां कोई चीज की कमी कैसे हो सकती है। तो वो कैसी जगह हो गई, रमा कीरणम अभूत नृप हे राजन। रमा कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी के क्रीड़ा स्थली हो गई, खेल का स्थान हो गया ब्रज। लक्ष्मी वहां घर घर में गली गली में लक्ष्मी ने अपना विस्तार करके आनंद मंगल करा दिया। ये 18 श्लोक पूरे हुए। कहते इसके बाद नंद बाबा ने कहा कि घर में आनंद हुआ है, इस आनंद की खुशी में कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। जो वार्षिक कर कंस को दिया जाता है दूध दही मक्खन, वो देने के लिए जाना चाहिए। तो नंद बाबा ने बैलगाड़ियों के ऊपर दही दूध मक्खन लिया और गोपों को साथ में लिया और उस नगर की रक्षा के लिए नवयुवक गोपों को छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए। बैलगाड़ियों में को मथुरा में एक बगीचे में खड़ा किया। नंद बाबा कंस को कर देकर वापस बगीचे में आए तो वसुदेव मिलने को आए। आज नहीं तो बहुत समय के बाद, कम से कम 11-12 साल के बाद नंद और वसुदेव का मिलन हो रहा है। कल आपको बताया था नंद और वसुदेव दोनों भाई हैं, उनका दादा एक है और एक ही कुल के हैं। तो वसुदेव जब मिलने आया तो इन दो मित्रों का, दो भाइयों का मिलन ऐसा अद्भुत है। वसुदेव जी अपने दुख की जरा भी चर्चा नहीं कर रहे, वो नंद बाबा के सुख में इतने आनंदित हैं। कहते हैं नंद, इस उम्र में आपके घर में बालक हुआ, आप कितना सौभाग्यशाली हैं। फिर कहता है मेरा लड़का बलराम आपके ही घर में रोहिणी का बेटा रह रहा है, वो आपको ही तो पिता समझता होगा, उसको ने मुझे तो देखा ही नहीं, तो आपका ही उधर पिता समझता होगा। और नंद बाबा ने अपने सुख का वर्णन न करते हुए कहा, वसुदेव इतने संकट तुम्हारे ऊपर आए, हम तुम्हारे सगे साथी संबंधी हैं, निकट में है, तुम्हारी सहायता को आ न सके, हमें इस बात का बहुत बड़ा दुख है। तो नंद वसुदेव के दुख में दुखी है और वसुदेव नंद के सुख में सुखी है। ये दो मित्रों का मिलन होना चाहिए, अपना दुख का रोना रोने की जरूरत नहीं दूसरे। और फिर वसुदेव कहता है नंद जी आप जल्दी वापस जाइए, क्योंकि गोकुल में कुछ उत्पाद हो सकते हैं, कुछ संकट हो सकता है। क्योंकि वसुदेव क्षत्रिय है, उसको कंस की चाल का पता है कि कंस ने ब्रज में सब बच्चों को मारने का, पूतना को, अघासुर को, बकासुर को, सब असुरों को कह दिया है, विशेष रूप से पूतना को बच्चों को मारने के लिए आदेश दे दिया है। इसलिए नंद तुम जल्दी वापस गोकुल चले जाओ। और नंद ने ये सुनते ही अपने बैलगाड़ियों को वहां से चलाया और नंद ने अपने हृदय में जो भगवान विराजमान है उसका शरण लिया कि नारायण मैं, मेरा बालक, मेरा गोकुल आपके शरण में है। और ऐसे करके नंद बाबा यहां से निकले। और दूसरे तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कंस ने बच्चों को मारने का जो योजना बनाया है ब्रज में, मैं इस राक्षसी को, किसी को मारने का अनुमति नहीं दे सकता, तो इसको मेरे पास ही बुला लो। तो भगवान तो पूतना के हृदय में भी परमात्मा के रूप में रहते हैं, वो सीधी गोकुल में आई। कैसे आई, आकाश मार्ग से उड़ के आई। लिखा खेतरी, खे कहते हैं आकाश में, आकाश मार्ग से आई और सज धज के सुंदर वेश धारण करके हाथ में मानो कमल जैसे उठाया हो और नीचे जैसे उतरी बाल घातनी परीक्षित। सुखदेव महाराज कहते खेतरी बाल घातनी नंद गोकुल में उतरी है। बाल घातनी का मतलब बच्चों को मार के उसका खून पीने वाली। तो परीक्षित महाराज बहुत भयभीत हो गए कि कि अभी अभी तो हमारा प्राण धन श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और ये वहां मारने के लिए जा रही है। तो सुखदेव महाराज कहते हैं जिसके नाम लेने से किसी का अहित नहीं हो सकता है, वो साक्षात जहां प्रकट हो जाए वहां ये पूतना क्या करे। एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है कि जहां भगवान के नाम का उच्चारण होता है वहां भी कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता, तो जहां साक्षात भगवान विराजमान है वहां क्या कोई किसी का बिगाड़ सकता है। और पूतना नीचे उतरी, सारे गोकुलवासी बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं लगता है कोई देवी आकाश से उतर के आई है, लगता है लक्ष्मी अपने पति के दर्शन के लिए आई हो। इंद्र की पत्नी सची तो नहीं है ये, तो दुर्गा तो नहीं है, बड़े आश्चर्यचकित। और वो सीधी नंद के घर में चली गई, नंद घर में भी नंद बाबा के कक्ष में चली गई और किसी ने रोका नहीं। और वहां पहुंचकर नील कमल जैसा श्री कृष्ण पीले सुंदर कपड़े से ढका हुआ, जैसे बिजली बादल के अंदर बिजली चमक रही हो, बादल जैसा तो कृष्ण का रंग है और ऊपर वस्त्र जैसे बिजली चमक रही है पीला, और वो बालक ऐसे सोया हुआ है आंखें बंद करके। और पूतना ने जाके, एक तरफ माता यशोदा बैठी है दूसरे तरफ रोहिणी बैठी है, और पूतना ने जाकर बालक को उठाया और दोनों को कहा देख देख बच्चे को देख रही है, दूध नहीं पिला सकती, लाओ मैं दूध पिलाती हूं। और दोनों माताएं बड़ी प्रसन्न हो गई कि हमारे कोई देवी आई है हमारे बच्चे को दूध पिलाने, तो अमृत पिएगा। और पूतना ने अपना स्तन उस बालक के मुंह में देने के लिए जैसे दिया, भगवान ने आंखें बंद कर दी। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी? तो छोटा बालक है, दूसरी स्त्री को देखा इसलिए आंखें बंद करी होगी। बोला नहीं, ये कारण हो सकता है, लेकिन भगवान ने देखा दूध पिलाने आई है मां की तरह और सज धज के स्त्री का हाव भाव दिखा रही है, इस दुष्टा का मुंह नहीं देखना चाहिए, आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा मेरी नजर इसके ऊपर पड़ गई तो इसका ये सुंदर स्वरूप समाप्त हो जाएगा, ये भयानक राक्षसी मेरी मां को अगर नजर आ गई तो मां डर जाएगी, इसलिए आंखें बंद कर दी। भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद कर दी कि मैं ब्रज में दूध दही मक्खन खाने को आया हूं और ये पहले ही विष पिलाने को आई है, विष पीना मेरा काम नहीं है, विष तो शंकर जी को पीना है, इसलिए मैं भोले को बुलाता हूं, आकर बोला आप आके विष पियो, मैं तो दूध पीऊंगा। तो भगवान शंकर जी का आवाहन कर रहे हैं। ऐसे बहुत से कारण लिखे हैं कि भगवान ने ऐसे आंखें क्यों बंद कर दी। और भगवान ने फिर दूध पीना शुरू किया, दूध पीने के साथ पूतना का प्राण खींचने लगे, पूतना को पीड़ा हुई। पूतना शब्द का अर्थ है जो पवित्र नहीं है, पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, तो जो पवित्र नहीं है वो परम पवित्र भगवान का क्या बिगाड़ सकती है। और पूतना को जब 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 दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी, तो दोनों हाथों हाथों से कहती है मुंचे मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। भगवान कहते हैं मेरे को पकड़ना आता है, छोड़ना आता ही नहीं, एक बार किसी को पकड़ लेता हूं फिर मैं छोड़ता नहीं। और पूतना को भगवान ने प्रेरणा दी कि यहां से भागो, नंद भवन से भागो, और वो भागी और भगवान उसको चपका हुआ है, भगवान को नीचे नहीं उतार सका। पूतना इतनी बड़ी शक्तिशाली थी, 6 दिन के छोटे को नीचे रखने में तो उसकी ताकत नहीं थी। पूतना वहां से भागी, जब गोकुल की सीमा से बाहर मथुरा के सीमा में आई जहां कंस का बहुत सुंदर बगीचा 12 कोस का था, वहां पूतना अपने स्वरूप में आ गई, बड़ी भयानक राक्षसी के रूप में धड़ाम से नीचे गिरी और प्राण निकल गया। कहते हैं पूतना जैसे कोई पर्वत का पूरा शिखर गिरा हो नीचे, उसके दोनों स्तन जैसे पर्वत के 2 चोटियां हो, उसके ऊपर छोटा सा बेटा ये लाला 6 दिन का उधर बैठ के खेल रहा है। अब 6 दिन का कैसे भगवान खेलता है, उसके स्तन को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, उसके नासिका ऐसे लग रही थी कि पर्वत की गुफाएं हैं, और उसकी दोनों ऐसे जांघें थी कि नदी के 2 तट हों, इतनी बड़ी भयानक पूतना के ऊपर। और यहां यशोदा मैया तो मूर्छित हो गई, बाकी गोपियां पीछे उसके दौड़ी, वहां जाके देखती हैं तो ये भयानक इतनी बड़ी राक्षसी का शरीर और उसके ऊपर वो छोटा बालक, वो तो बड़ा आनंद से खेल रहा है। अब इसके ऊपर चढ़ने के लिए पूतना की चोटी जो फैशनेबल डबल चोटी बना के आई थी ना, वो डबल चोटी को गांठें दे के सीढ़ी बना ली, उसके ऊपर से गोपियाँ चढ़ गई ऊपर, ऊपर चढ़ के कन्हैया को हाथ में उठाया और नीचे उतर के आई, और उतर के ही सीधा गाय के खुर की धूली ले ली और गाय की पूंछ को पकड़ के कृष्ण की रक्षा के मंत्र पढ़ने लगी। गोपाल तेरे माथे की रक्षा करे, हाथ की रक्षा गोविंद करे, और मुरलीधर तेरे छाती की रक्षा करे, ऐसे भगवान के ही नाम लेके भगवान की रक्षा के मंत्र पढ़ने लगी। फिर गोपियों ने कहा, हमने तो मृतक राक्षसी के शरीर के ऊपर चढ़ के चली गई और बच्चे की रक्षा के मंत्र पढ़ रहे हैं, ये काम कैसे करेंगे? हमको भी शुद्ध होना चाहिए, आचमन करना चाहिए, पवित्र होके फिर पवित्र ऐसे रक्षा के मंत्र पढ़ने लगी और फिर बच्चे को लाके यशोदा मैया को दिया। यशोदा ने स्तनपान कराया, बच्चे ने स्तनपान किया, माँ ने समझा कि बच्चे को कुछ हुआ नहीं, बच्चा ठीक है। और नंद बाबा जो वहां से मथुरा से निकले थे, वो जब उस स्थान पे आए जहां ये पूतना का मृतक शरीर गिरा पड़ा था, नंद बाबा ने कहा, रोड कैसे ब्लॉक हो गया? सुबह तो यहां से गए थे, ठीक था, ये पर्वत कहां से गिरा है? नजदीक जाके देखें तो बड़ी राक्षसी का शरीर है। अरे, वसुदेव सच कह रहा था, गोकुल के अंदर उत्पात हो गए, ये तो बड़ा ज्योतिषी जैसा बड़ा बुद्धिमान है। नंद बाबा तो बहुत सरल हैं, उन्होंने कहा, अरे राक्षसी वापस जीवित ना हो जाए, इसलिए इसका शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दो। तो कुलारियों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर बोला, लकड़ी लाके इसको अग्नि संस्कार कर दो। और पूतना का अग्नि संस्कार भगवान का पिता कर रहा है, क्योंकि भगवान ने एक बार उसको छू लिया, उसका दूध पी लिया, तो आज उसका सौभाग्य ऐसा हुआ कि नंद बाबा ने उसका अग्नि संस्कार किया और उसके शरीर से जो धुआं उठ रहा था अग्नि का, उसके अंदर से अगरबत्ती की खुशबू और गुगल की खुशबू और अगरू की खुशबू इतने के 10 कोस के अंदर लोगों ने समझा कोई बड़ा यज्ञ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा क्या अद्भुत कार्य हो गया। और यहाँ से नंद बाबा घर में आए तो सब समाचार मिला, फिर ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन किया, फिर दान पुण्य किया कि बच्चे का भाई संकट मिट गया, भगवान नारायण ने इसकी रक्षा की है। और इसके अब भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के हुए हैं, 3 महीने का बच्चा करवट अपने आप बदल रहा है और सर को उठा के अपने सर को पकड़ रहा है। पहले बच्चा सर को पकड़ नहीं सकता है, 3 महीने के बाद सर को थोड़ा संभाल सकता है, तो उसको उत्थान उत्सव कहते हैं। वो माँ खुश हो जाती है कि बच्चे का अच्छी तरह से पालन पोषण हो रहा है, इसमें शक्ति ठीक आ रही है, समय से करवट बदल रहा है, समय से सर उठा रहा है। और जब बच्चा सर उठाता है तब उसको घर से बाहर ले जाते हैं, तब तक घर से बाहर नहीं ले जाता है प्रायः। तो आज यशोदा मैया ने बहुत बड़ा उत्सव किया है, उसको कहते हैं उत्थान उत्सव, बच्चे के गर्दन उठाने का उत्सव है। अपनी सहेलियों को घर में बुलाया है और बच्चे को बहुत सुंदर स्नान कराकर, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर, और बच्चे को नींद आने लगी तो घर से बाहर एक बड़ा लकड़ी का छकड़ा, लकड़ी का एक ठेला जैसे है वो पड़ा था, उसके ऊपर दूध दही के बर्तन रखे हुए थे। यशोदा ने कहा, घर में बच्चे को सुलाऊंगी तो यहाँ शोर होगा, कहीं जाग न जाए। वो बाहर जो बहुत आंगन में ठेला पड़ा है लकड़ी का, उसके नीचे एक खटिया बहुत सुंदर पड़ी है, जगह अच्छी है, उधर सुला दूँ, बड़ी हवा भी लगेगी, बच्चा थोड़ा आराम कर लेगा। तो माँ यशोदा अपने साथ बच्चे को लेकर उधर थोड़ी देर सो गई, बच्चे को गहरी नींद आ गई, यशोदा उठ के आ गई और बहुत बड़ी नंद की पत्नी है, नंद की आज्ञा लेकर और उसकी सहायता से ये बड़ा उत्सव कर रही थी। और इतनी बड़ी उधार चित थी कि सबको आए जो मेहमान थे उनका स्वागत कर रही थी, किसी को वस्त्र, किसी को आभूषण, किसी को खाने का पदार्थ, सब ध्यान से अच्छी तरह से कार्य कर रही थी। बच्चा रोया, यशोदा ने सुना ही नहीं क्योंकि काम में लगी हुई थी और बच्चा बाहर था, और बच्चा रोया और रोते ही पांव उछालने लगा, और जैसे बच्चे ने पांव उछाला, बच्चे के पांव ने उस लकड़ी के ठेले के जहां पहिया था वहां पांव जाके छुआ और धड़ाम से छकड़ा नीचे गिरा और ऊपर के बर्तन नीचे गिरे और इतना बड़ा आवाज हुआ कि सब स्त्रियां जो अंदर थी भागती हुई बाहर आ गई। भगवान ने क्या सोचा, यहां कितनी लीलाएं साथ में साथ हुई। पहली लीला ये हुई कि एक असुर है, जो हवा में होता है, जिसके अंदर प्रवेश करे उसका रूप धारण कर लेता है, इसका नाम है शकटासुर। ये शकट कहते हैं लकड़ी के ठेले को, और शकट के अंदर प्रवेश कर गया और उसने कहा कि अब मैं दबा के कृष्ण को मार दूंगा। तो कृष्ण को तो देख लिया, कृष्ण ने देख लिया कि ये मामा का भेजा हुआ खिलौना आया है। मामा ने पहला खिलौना कौन सा भेजा? गुड़िया भेजी, डाओ क्या कहते हैं डॉल को, क्या कहते हैं, बारबी भेजी। पूतना बारबी आई पहली, उसका तो गर्दन उखाड़ दिया। और अब मामा ने टैंक ट्रैक्टर भेजा के इसके नीचे दबा के मार देंगे। तो भगवान ने उसको देख लिया, किसी को मालूम नहीं था। और भगवान ने कहा उत्सव हो रहा है, मेरा गर्दन उठाया मैंने, करवट बदली मैंने, मेरे को घर से बाहर एक से ठेले के नीचे सुला के अंदर माल खा रहे हैं। अब सबको यहाँ इकट्ठा करके दिखाता हूँ, क्यों आई मेरे लिए है, मुझे छोड़ के वहां अंदर कहाँ घूम रही है। तो भगवान ने कहा ऐसा लीला करनी चाहिए कि सब यहीं इकट्ठे हो जाएं। और फिर भगवान ने देखा मैं हूँ रसराज, सारे रसों का राजा हूँ मैं, मेरे ऊपर ये गौरस दही दूध मेरे ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, इनको तो नीचे गिराना ही चाहिए। मैं राजा हूँ तो मेरे से नीचे होंगे कि मेरे से ऊपर होंगे। सो ऐसे केवल अपने पाँव का स्पर्श किया और उस शकटासुर का तो प्राण निकल गया, वो शकटासुर मर गया और ये पूरा छकड़ा और बर्तन नीचे गिरे। सब भागते हुए आए, क्या हुआ क्या हुआ। जो माताएं आई थी ना पार्टी में, वो अपने बच्चों को लाई थी उत्सव में, तो सब बच्चों को यशोदा ने कहा कि आप इस छोटे बच्चे के चारों ओर बैठे रहो, ये रोए तो मुझे बुलाना। तो बच्चा रोया, पांव उछाला, पांव से छकड़ा गिरा, ये सब उधर पहुंचे, अरे किसने गिराया छकड़ा, कैसे गिरा, इतना बड़ा छकड़ा, इतने सालों से यहाँ पड़ा है, बड़ा लंबा छकड़ा, दो माल जितना छकड़ा था, कैसे गिर गया, किसने गिराया। वो छोटे छोटे बच्चे जो बैठे थे ना, बोला इतने पर लात मारा इसने, लात, अरे इसकी लात से इतना बड़ा छकड़ा गिरेगा। बच्चे सच कह रहे थे लेकिन किसी ने नहीं माना। स्वस्ति वाचन, फिर पूजन कराया, फिर कहा कि बच्चे की रक्षा होनी चाहिए। कृष्ण एक साल का हो गया, माँ उसको प्रेम से दूध पिला रही। अब मामा ने हेलीकॉप्टर भेजा कि ये बच्चे को ऊपर आकाश का शेर करा के आओ, भांजा हमारा आया है। और ये सारे खिलौने चाइना के बने हुए थे, जैसे आए और मामा जी लात मारे तो टूट जाए, मामा के खिलौने भांजा तोड़ दे, ऐसे खिलौने थे। अब ये आकाश मार्ग से बमंडल के रूप में तृणावर्त आए। तो भगवान ने कहा देखो ये मामा ने मेरे लिए खिलौना भेजा है, मेरे को तो ये घुमाने जाएगा लेकिन मैया को कहीं साथ उठा के गया तो डर जाएगी, तो क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपना भार बढ़ाने लगे और यशोदा कह रही है इतना भारी कैसे हो रहा है, ये कैसे भारी होगा, इतना छोटा बच्चा है, लगता है मेरे पाँव को नींद आ गई। मैया ने समझा मेरा पाँव सो रहा है और बच्चे को नीचे रख दिया, और नीचे रख के अंदर चली गई। जैसे अंदर चली गई तब तक मामा का खिलौना आया, हेलीकॉप्टर ने कन्हैया को उठाया और आकाश में चला गया, और कन्हैया ने उसके गर्दन को पकड़ लिया। वो मथुरा की तरफ जाए तो ये भारी हो जाए, वो उड़ न सके, और ये गोकुल के ऊपर घूमे तो बहुत हल्का हो जाए। और कन्हैया हंस रहा है, कहे बोला गोकुल घूमने का मजा ले रहा है और मथुरा की तरफ जाए तो वो चल न सके। अब थोड़ी देर घूमने के बाद भगवान ने उसके गले को इधर से थोड़ा दबाया, दबाया क्या, हाथों से पकड़ा हुआ था कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, और उसके गले में ऐसे घुटन होने लगी और उसका सर नीचे, जहां से उसने उठाया था वहीं नंद गोकुल में आया, सर एक पत्थर के ऊपर लगा और गिरते ही तृणावर्त का तो प्राण निकल गया और ये छोटा बालक उसके गले को पकड़ा हुआ बैठा है, जैसे काले बादल के ऊपर है, काले बादल के ऊपर ये छोटा सा कन्हैया पीला पीताम्बर पहना हुआ उसको गले में लटका हुआ है। और सबने देखा, अरे राक्षस तो मर गया, कितना बड़ा भयानक था। कन्हैया को फिर उठाया और उठाने के बाद नंद बाबा ने फिर ब्राह्मणों को बुलाया, फिर उसकी रक्षा के मंत्र पढ़े। एक दिन यशोदा मैया दूध पिला रही है कन्हैया को, कन्हैया ने जमाई ली, पहले तो बहुत देर तक दूध पी रहा था, दो घंटे हो गए दूध पी रहा है, न तो यशोदा का दूध कम हो रहा है, न कन्हैया का पेट भर रहा है। तो मैया ने समझा ज्यादा पी रहा है, कहीं अपच न हो जाए। तो भगवान ने कहा मैया को मैं बता दूं कि मेरे को अपच नहीं हो सकता है। कन्हैया ने मुंह माँ के स्तन से मुंह बाहर निकाल के जमाई ली। जैसे मुंह खोला तो यशोदा मैया ने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा। भगवान ने कहा मेरे पेट के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, सारे जीव समाये हुए, तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा हूँ, ये सब अमृत पी रहे हैं, इसलिए मेरे को अपच नहीं हो सकती, तुम चिंता मत करो। माँ को सुंदर ब्रह्मांड का रूप दिखाया, और इसके बाद रूप दिखाया तो भगवान का नामकरण संस्कार भी होना चाहिए। वैसे बच्चे का नाम 3 महीने अंदर रखना चाहिए। तो यदुवंशियों का पुरोहित है गर्गाचार्य, नंद बाबा का पुरोहित है सांडल्य ऋषि, वृषभानु महाराज का पुरोहित है भागुरी ऋषि, पांडवों का पुरोहित है धौम्य ऋषि। हर एक को अपना पुरोहित होता था पहले। पुरोहित का अर्थ है अपने यजमान का पहले हित करे। तो ये पुरोहित पहले सबको अपने अपने पुरोहित होते थे। अभी किसी के पास भी कोई ऋषि, कोई साधु, कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं है। अब सबके फैमिली डॉक्टर हैं, पहले फैमिली पुरोहित हुआ करते थे। तो ना वसुदेव ने कहा कि मेरा बेटा, वसुदेव जानता है दोनों मेरे बेटे हैं कृष्ण और बलराम, तो उनका नामकरण संस्कार करने के लिए उनको गोकुल में भेजा। नंद के घर में जैसे गर्ग आचार्य आए, नंद बाबा ने उसको साक्षात जैसे भगवान की पूजा करते हैं ऐसे उस महात्मा के लिखा है अधोक्षजय, जैसे इंद्रियों से परे भगवान का सम्मान करते हैं श्लोक में ऐसे लिखा है, उसका पूजन किया। और फिर कहा आप जैसे महात्मा किसी के घर में हमारा हित करने के लिए ही आए हैं, नहीं तो आपको विचरण करने की जरूरत नहीं है। साधु संत एक जगह से दूसरी जगह भला करने के लिए ही जाते हैं, और आप तो ज्योतिष का मूर्तिमान स्वरूप हो गर्गाचार्य जी। अब हमारी एक विनती है, हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो, आप आए हो तो। गर्गाचार्य आया तो इसी काम से था, लेकिन सावधान करने के लिए नंद मैं तो हूं यदुवंशियों का पुरोहित, मैंने अगर नामकरण संस्कार किया तो कंस को पता लग जाएगा कि गर्गाचार्य नाम रखा है, इसका मतलब उसको अभी भी संदेह है कि वसुदेव का 8वां लड़का नहीं हो, लड़की नहीं हो सकता, तो उसको तो संदेह हो जाएगा और आपके बच्चे के लिए समस्या हो सकती है। नंद बाबा कहता है मैं किसी को पता लगने नहीं दूंगा, बड़ा उत्सव नहीं करूंगा। बोला बच्चे का इतना बड़ा उत्सव किया, नंद उत्सव इतना बड़ा हुआ कि यहां से दूध की धारा प्रयाग तक पहुंच गई, और हर एक आदमी ने कितना कितना दान दिया, और बच्चे के नामकरण में तो तुम बहुत बड़ा पूरे गोकुल के 84 कोल ब्रज को बुला लोगे। नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं, छुपा कर बाहर भी नहीं, हमारे अपने महल की जो गौशाला है जिसमें हमारे बालक के लिए दूध की गैया जो रखी है पद्म गंधा, अब गैया चरने गई है, गौशाला में पहले ही गोबर गिरा हुआ है, कुछ लेप करने की भी जरूरत नहीं है, बस 2 बच्चे 2 माएं और मैं, और किसी को नहीं बुलाएंगे। और यही गर्गाचार्य चाह रहा था। अब वहां दोनों माताएं बच्चों को लेकर बैठ गई और कहा कि न कुछ नहीं, स्वस्ति वाचन करके नामकरण संस्कार करो, बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब गर्गाचार्य दोनों माताओं ने क्या किया, बच्चे एक दूसरे के गोद में ले लिए। सुरोहिणी ने कृष्ण को रखा गोद में और यशोदा ने बलराम जी को रखा। भाई पंडित जी ये देखें कि इसका ज्योतिष से पता लगता है कौन किसका बच्चा है। गर्गाचार्य ने पहले यशोदा की ओर देखा, बोला आपकी गोद में जो रोहिणी का बच्चा है, सीधा कहा आपकी गोद में जो रोहिणी का बच्चा है ना, ये बड़ा बलशाली होगा और इसके बल से धर्म की रक्षा होगी, इसके लिए इसका नाम बलभद्र होगा। बल वैसा, वो बल जो सबका कल्याण करे, बलभद्र होगा और ये सबको आनंद देगा, इसलिए इसको राम कहेंगे। और ये दो खानदानों के बीच में, 2 कुलों के बीच में सेतु बनेगा, आप गोकुलवासियों के बीच में और यदुवंशियों के बीच में ये सेतु बनेगा, इसलिए इसको संकर्षण कहेंगे। और ये जीवों को भटके भूले बंध जीवों को खींच खींच कर कृष्ण के चरणों में लाएगा, इसलिए भी इसका नाम संकृष्ण होगा। और फिर तीसरा कारण संकृष्ण शब्द का अर्थ है, जो पहले देवकी के गर्भ में आया और खींचकर जिसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए भी इसको संकृष्ण कहेंगे। तो संकृष्ण के तीन अर्थ यहां बताए, एक तो दो खानदानों को मिलाएगा और एक जीवों को भगवान के चरणों में लाएगा। और फिर कहते हैं ये जो रोहिणी यशोदा नंदन है, ये तो जुग जुग में आता है, ये जुग जुग में प्रकट होता है, ये कभी रक्त वर्ण में आता है, कभी श्वेत वर्ण में आता है, अभी नील वर्ण में आया है, और कभी पीत वर्ण में, पीले वर्ण में भी आता है। तो इसको कहते हैं त्रियुगी नारायण, तीनों युगों में आता है, और भविष्य में ये कल युग में पीले रूप में, पीले रंग में आएगा। पीले रंग में कैसे आएगा? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएगा। ये कल युग में पीले रंग में भी आएगा। और कहा कि पहले कभी ये वसुदेव के घर में भी पैदा हुआ है, जो आपका बेटा है ये। तो नंद बाबा पहले तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले नहीं, पहले वसुदेव के घर में पैदा हुआ है जो आपका लड़का है। तो उधर भी प्रकट हुआ, इधर भी प्रकट हुआ, दोनों जगह हुआ, दोनों ऐसे बात ऐसे कही। और फिर कहा कि इसके गुण नारायण के समान हैं, और इसका अर्थ है, जीव गोस्वामी कहते हैं नारायण भी इसके समान गुणों में नहीं है, चार गुण इसमें ऐसे हैं जो नारायण में भी नहीं है। नारायण असमो गुण, संस्कृत लिखा है असमो गुण, नारायण के, नारायण में भी इसके समान गुण नहीं है। ये बांसुरी बजाता है, नारायण के पास बांसुरी नहीं है। ये सुंदर लीलाएं करता है, जैसे नारायण की कोई माता नहीं है, लेकिन ये तो माता की गोद में खेलता है, दूध पीता है, नारायण नो दूध नहीं पीता है, ये मधुर लीलाएं करता है। वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, ये बहुत सुंदर रूप वाला है, और लीला माधुरी इसकी अद्भुत लीलाएं हैं। और फिर कहा आप इस बच्चे का अच्छी तरह से पालन पोषण करो, ये बच्चा आपको सब संकटों से बचाएगा। और ये कहकर गर्ग आचार्य विदा होने लगे, तो विदा होने से पहले ब्रजवासी भाव में कथा कहते हैं, यशोदा मैया के मन में आया इतना बड़ा ज्योतिषी है तो इससे पूछना चाहिए, रोहिणी इसको पता लगता है इसके विवाह होंगे। और उस वक्त गर्ग आचार्य कहते बहुनी संतानी, बहुनी संतानी मतलब इसके बहुत, असल में इसके बहुत बहुनी संतानी रूपाणी, संस्कृत का श्लोक ऐसा है, बहुत सी बहुनी का मतलब बहुत सी है, लेकिन यशोदा बिचारी कोई ज्यादा संस्कृत का विचार नहीं किया, बोले इसकी बहुत सी बहुएं होंगी इसका एक ब्याह नहीं होगा, बहुत सारे ब्याह हो जाएंगे। और नाना रूपाणी, बहुत बड़े अलग अलग रूपों में, और तो कहाँ से कोई कितनी ब्याह होंगे इसका कोई हिसाब नहीं है। और यहाँ से गर्ग आचार्य विदा हो गए, और नंद बाबा के घर में अब कन्हैया नाम भी हो गया, और इसका दत्त नाम कृष्ण, छोटा सा दो शब्दों का नाम है, लेकिन ये पूरे संसार को आकर्षण करने वाला हुआ। इसके बाद भगवान की बाल लीलाएं शुरू होती हैं, और बाल लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण पहले तो घुटनों के भर रेंगना शुरू करते हैं, और घुटने के भर रेंगना शुरू करने के बाद पाँव में माँ पायल बांधती है, झुंझने वो पाँव में छनछन होता है, अपने पाँव में छनछन को देख के बड़ा खुश होता है, पीछे मुड़ के देखता है, और कोई आगे से जाता होता है तो उसके पीछे चला जाता है, और थोड़ी देर जाके देखता है अरे ये तो हमारा अपना नहीं है, फिर वहाँ से लौट के वापस आ जाते हैं। अब फिर घुटनों के बल खिसकने के बाद चलने शुरू किया, अब जब पाँव से थोड़े खड़े उठ के खड़े होकर चलना शुरू किया तो बछड़ों की पूछ पकड़ लें, बछड़ा भागे उसके पीछे लटकते हुए जाएं तो गोपियां उसको पकड़ के वापस लाएं। अब थोड़े बड़े हुए तो घर से बाहर जाकर दोनों भाई अपने ऊपर मिट्टी लगाएं, ब्रज की रज। अरे मैया कहती है अभी आपको सुंदर कपड़े पहनाए, स्नान कराया, ये मिट्टी लगा के, तो मिट्टी को फिर पहुंच के साफ कर दें। कन्हैया बोलता है रोज मैया मैं इतनी ब्रज की रज अपने ऊपर लगा के आनंद लेता हूँ, मैया रोज साफ कर देती है, आज मिट्टी नहीं लगाएंगे ब्रज की कीचड़, जो गाय का गोबर और गोमूत्र से सनी हुई कीचड़ है उसको ऊपर से लेके बलराम जी के ऊपर डाल रहे हैं, बलराम जी कृष्ण के ऊपर डाल रहे हैं। और यहाँ सुखदेव महाराज लिखते हैं पंक अग्रा अंगराग, पंक कहते हैं कीचड़ को, अंगराग का मतलब है जैसे क्रीम लगाई जाए, वो क्रीम की तरह पूरे शरीर के पंख लगा रहे हैं। यशोदा मैया अंदर से कहती है अरे तू तो सूकर है, सूकर तू तो सूकर, सूकर सूअर को कहते हैं जो गटर के अंदर पड़ा होता है, ये सारा दिन तुम्हारे को कितना सुंदर बनाया। भगवान बोलते हैं मैया तू मेरे को पहचान गई, मैं ही तो वारा अवतार था, तुमको कैसे पता लग गया कि मैं सूकर हूँ। तो कन्हैया ऐसे अद्भुत लीला करके माना सबका मनोरम मन आनंद कर रहा है, अब चलने लगा। तो अब पहले माखन चोरी की लीला शुरू की, अब तो 2-2.5 साल का हो गया है, तो माखन चोरी बोला कहाँ से लीला को शुरू करनी चाहिए, बोला पहले चोरी घर से करनी चाहिए, पकड़ेंगे तो कम से कम मारेंगे तो नहीं, बाहर वाले कोई पकड़ेगा तो मारेगा, कुछ पकड़ेगा तो पहले घर की मूर्त चोरी घर से करते हैं। कन्हैया अंदर गया, जो मक्खन बहुत मैया ने सुंदर स्वादिष्ट एक तरफ रखा था उसके अंदर हाथ डाला, मक्खन उठाया, अभी खाया तक नहीं था, कहा एक तरफ जाके खाता हूँ, बाहर निकल रहा था तो नंद बाबा के महल के खंभे जो थे वो चमक रहे थे, वो ऐसे सुंदर पत्थर के तो क्या बने हुए थे, हीरे माणक मोती के थे, उसके अंदर अपनी शक्ल दिखाई दी कन्हैया को। कन्हैया अरे तू भी चोरी करता है, अपने को बोलता है तू भी चोरी करता है, बोलेगा नहीं ना मैया को तू खा ले, तो वो भी अपना ही प्रतिबिंब, वो कहता तू खा ले, बोला नहीं मानेगा, वो बोलता नहीं मानेगा। मैया देख रही है अरे कन्हैया क्या कर रहा है, अरे मैया तू बूढ़ी हो गई, तेरे घर में चोर देखो मक्खन ले जा रहा है, मैंने इसको इसके अंदर दबा दिया। मैया हंसती है कि कन्हैया ए बैठ मेरे गोद में, देखो इस खंभे के अंदर कन्हैया दिख रहा है, बोला हाँ मैया, बोला मैया दिख रही है हाँ, बोला मैं हूं, बोला हाँ, तो फिर ये कौन है, बोला ये प्रतिबिंब है बेटा, इसके अंदर तुम्हारा प्रतिबिंब। अच्छा मैया इसको प्रतिबिंब बोलते हैं, अब सारी दुनिया को ज्ञान देने वाला भगवान उसको मैया कहती है, इसको प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा मैया, मैया कहती है भैया देखो लाला चोरी ना करो नहीं तो तेरा ब्याह नहीं होगा, लोग कहेंगे चोर है। अच्छा मैया तो ये घर किसका है, अरे बेटा तेरा घर है ना, तो नंद बाबा किसका, अरे तेरा मुझे नंद बाबा, मैं किसकी हूं तुम किसकी हो मैया, मैं तेरी मैया, बोला गैया किसकी, अरे तेरी कन्हैया गैया। फिर एकदम गोद से उठ के कहता है मैया मेरी, गैया मेरी, बाबा मेरा, धन मेरा, मैं चोरी करके खाऊं मेरी मर्जी, जैसे चाहे वैसे खाऊं, लेकिन आज फेल हो गया, खाने को कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन फिर चले गए अंदर, माखन के मटके में हाथ डाला, माखन खाया, माँ ने देखा, बोला कन्हैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो कन्हैया, मेरे बाप क्या कर रहे हो, लिखा पिता पित्रेति, ये मेरे बाप क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब मत कर मैया, बड़ा संकट है, क्या लाल रंग का पद्मराग मणि का कड़ा मेरे हाथ में डाला है, वेद कहते हैं मक्खन में डालूं, ए मेरा हाथ जल रहा है, हाथ को ठंडा कर रहा हूं भैया। भैया आई, अच्छा हाथ तुम्हारा जल रहा था इसलिए ठंडा कर रहे हो, ये मुंह में कैसे लग गया मक्खन, मैया मक्खी यहां बैठी थी उसको हटाया था। मैया कहती है कितना चालाक है, मक्खन खा रहा है कहता है मैं कड़े हाथ में हाथ ठंडा कर रहा हूं, मैया ने पकड़ लिया लेकिन थोड़ा मक्खन आज खा लिया। फिर गोपियों के घर में मक्खन चोरी करना, दूध चोरी करना, दही चोरी करना, और सब गोपियां बुला करने आती थी और वो सबके घर जाता था, एक ऐसा घर नहीं है जिसके चूल्हे चौके में कृष्ण नहीं गया हो मक्खन चुराने के लिए। तो गोपियां आके यशोदा को शिकायत लगाती थी, अब गोपियां एक श्लोक को ही पढ़ के आगे चलेंगे। गोपियों का झुंड यशोदा के पास आया है। एक गोपी कहते यशोदा वत्सान मुंचन क्वचित समय, हमारे घर में आता है गाय धोने के समय से पहले ही बछड़ों को खोल देता है। तो यशोदा मैया के ना कहा, पहले तो कहा तुम्हारे घर में बछड़े खोल देता है, बोला अच्छा करता है, तुम्हारे घर में काम करता है, बछड़े खोलने वाला चाहिए, फिर बछड़ा थोड़ा दूध पिए, फिर उसको खींच के बांधने वाला चाहिए तुम्हारे घर के, बोला बिना समय के दूध धोने के समय नहीं खोलता है, ऐसे ही खोल देता है और दूध बछड़े पी जाते हैं, दूध निकलता ही नहीं है। बोला फिर तुम इसको क्रोध किया करो ना, क्रोश हम क्रोध करती है संजात हास है और ये हंसने लगता है, हम करें क्रोध और ये हंसे, और जैसे ये हंसे हमारा क्रोध खत्म हो जाए। बोला कौन सी लीला भगवान कर रहे थे जिसकी शिकायत गोपी कर रही थी? एक गोपी बड़ी चालाक थी, गोपी ने क्या किया, मक्खन का मटका अपने कुर्सी के नीचे रखा, वो मूढ़े के ऊपर ऐसे बैठी है और कहा कन्हैया आ जाओ, सब मित्रों को लेके आओ, तुम्हारे साथी मधुमंगल को लाओ, सुबल को लाओ, तो कृष्ण को लाओ, सब सखाओं को लेके आओ, श्रीधामा को लाओ, और मैंने सुना है कि तुम्हारे को पता लग जाता है माखन कहाँ रखा है, आज तुम मेरे मक्खन घर में कहाँ रखा है ढूंढ के निकालो, वो खा के दिखाओ। कन्हैया ने ऐसे कहा मक्खन तो इसके नीचे पड़ा है, ये तो कुर्सी के नीचे रख के बैठी है। गोपी बड़ी होशियार है चालाक है, कन्हैया ने अपने मित्रों को कहा जाओ इसके बछड़े खोल दो। वो जो मित्र जाए बछड़े खोले, बछड़ों ने जाके गाय का दूध पिया, कन्हैया बोलते हे गोपी वो देख तेरी गाय का दूध बछड़े, गोपी भागी गाय को बछड़े खोलने के, गोपी जैसे वहां से गई कन्हैया कुर्सी हटाया, मटका निकाला, कुर्सी के ऊपर बैठ के मटके से माखन खाने लगा। गोपी वापस आई तो देखा माखन निकाला भी और खा भी गया। तो गोपी कहती है समय से पहले बछड़े खोलते हैं, ऐसे नहीं खोलता था, जब गोपी कोई होशियारी करती थी तो उसका मक्खन ढूंढ के लिए ऐसे कर ले। दूसरी गोपी कह रही है इस्तेयम न स्वाद्यति, अति स्वादिष्ट जो हमारे घर में दधी दही, हम वो स्वादिष्ट दही अपने पति के रख लिए रखते हैं, अपने बच्चों के लिए रखते हैं, बाकी तो बेचने वाला बाहर रखती है, वो जो अंदर रखती है ना छुपा के, उसको क्या करता है इस्तेयन उसकी चोरी करता है, उसी की चोरी करता है जो सबसे अच्छा हम अपने परिवार के लिए अपने प्यारों के लिए रखता है, और क्या करता है पयह और दूध की चोरी करता है। कल्पित ही स्तही योगी, और रोज नया नया नमूना निकालता है चोरी करने का, सब समय एक जैसा तरीका नहीं है। बोला दही की चोरी का कौन सी कथा है, कैसी लीला की? कन्हैया एक घर में घुस गया, बड़ा अच्छा दही जमा हुआ था परात में, लाल लाल मलाई ऊपर थी, जाके सपा सब खाने लगा। गोपी ने कहा रे कन्हैया तू दही क्यों खा रहा है? अरे मैया बहुत अच्छा दही, अरे तेरी मैया का घर नहीं है मेरा घर। अरे गोपी तेरा घर है मुझे पता नहीं लगा, मैं समझा मेरा अपना घर है। तो गोपी कहते मैं तेरे को पकड़ के यशोदा को दिखाऊंगी। बोला तेरा दही कौन खा रहा है, तू बूढ़ी हो गई, ना तेरी बहू ना तेरी बेटी, इतनी सारी चींटियां पड़ गई थी, मैं दही से चींटियां निकाले तेरे घर का काम कर रहा हूं। अरे कन्हैया तू दही से चींटियां निकाल रहा है? बोला सब निकाले देखो, एक एक करके निकाली, एक एक करके। बोले कहां गई चींटियां? बोला बिल में चली गई, सब गई बिल में। अरे कन्हैया तू चींटियां निकाल रहा था तो हाथ तुम्हारा दही वाला हो, तेरा मुख सारा दही वाला पड़ा है, एक चींटी यहां से जाती 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 मुख तक जब पहुंची, मैं चींटी को हटाया दही मुख को लग गया तो जबान में लगा होगा थोड़ा, आज तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तेरा हाथ में दही तेरे मुख में दही, मेरे घर में तू आया, आज पकड़ के यशोदा को तेरे को दे चलती हूँ। गोपी ने हाथ जबरदस्ती पकड़ा कन्हैया का और घर से बाहर निकली, और यशोदा मैं तेरे घर के लिए आ रही थी। कन्हैया ने पहले कहा अरे गोपी तेरे को लज्जा नहीं आती है, इतने बड़े बूढ़े आ रहे हैं तो मुंह खुले जाती है, घूंघट नहीं निकाल सकती। अरे उसने कहा हाँ बड़े बूढ़े आ रहे हैं तो कपड़ा ऐसे कर लिया, मुंह ढक लिया गोपी ने। गोपी के बच्चे को कन्हैया ने कहा इधर आ भैया, और कहता है गोपी तू गोबर उठा उठा कर तेरे हाथ कैसे सख्त हो गए हैं, मेरा नरम हाथ को दर्द हो रहा है, ये छोड़ो पहले वाला हाथ छोड़ो दूसरे वाला हाथ पकड़ो। तो गोपी को एक तो घूंघट निकला हुआ है और हाथ कन्हैया का छोड़ा, कन्हैया ने उसके बच्चे का हाथ उसके हाथ में थमा दिया और कन्हैया भागा और जाके माँ के पास सो गया। यशोदा कहती है कन्हैया तू आज खेलने नहीं जाएगा? अरे मैया आज मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा है, मैं आज आराम कर रहा हूं। तब तक गोपी आई घूंघट उतार के कहती है यशोदा तेरे लाले को आज पकड़ के लाई, तू कह रही थी ना चोरी करता है तो पकड़ के लाना, रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं, दही मुंह में लगा है हाथ में लगा है। यशोदा हंस के कहती है ए भोली गोपी देख तो तेरा छोरा है कि मेरा छोरा। देखती है तो अपना टेक थप्पड़ मारे तू कहां से आया। अरे बेरी लज्जित होके बाहर निकली गोपी और कन्हैया घूम के गोपी के सामने आ गया। पहले तो उस गोवा छोटे बच्चे को कहता अरे भैया आज तूने दोस्ती में एक थप्पड़ खाई, तू चिंता मत कर कल जिसके घर जाएंगे ना चोरी करने मटके का उद्घाटन तेरे हाथों से कराऊंगा। उसको खुश करके फिर गोपी को कहते अरे गोपी आज तूने पकड़ के मैया को शिकायत लगाई तो तेरे बच्चे का हाथ हाथ में दे दिया, फिर कभी ऐसे करोगी तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। गोपी बिचारी लज्जित होके चली गई। पयः कल्पितः, पय कहते हैं दूध को, दूध की चोरी कैसे करें और कैसा नमूना चोरी करने का दूध का निकाला है। एक गोपी ने विचार किया कि कन्हैया को चोरी करते हुए पकड़ना है, उसने ऊपर से एक रस्सी लिया, रस्सी को ऊपर बांधा और रस्सी के अंदर एक घंटा बांधा और घंटे के जो बजने वाला डंडा है उसके अंदर दूध का मटका बांधा और फिर जाके निमंत्रण दे के आई कन्हैया तुम अपने संगी साथियों के साथ आज हमारा बड़ा अच्छा कढ़ा हुआ दूध लटक रहा है घर में आके पीना। ये गोपी जाके निमंत्रण दे के आई। हाँ गोपी जरूर आएंगे। और गोपी के घर में कन्हैया गया तो देखा मटका तो दूध का बड़ा अच्छा है लेकिन घंटे के अंदर बंधा हुआ है। संग के साथियों ने कहा अरे कन्हैया गोपी बड़ी होशियार है, मटके को हाथ लगाएंगे घंटा बजेगा और घंटा बजेगा गोपी आएगी, गोपी आएगी तो पकड़ लेगी। कन्हैया ने बोला चिंता मत करो, घंटों के देवता को बुलाते हैं। ए घंटों का देवता जी महाराज। बोल तुम कौन हो? मैं आपका सेवक हूं। अरे मैं कौन हूं? कन्हैया आप हमारे स्वामी हो। बोला क्या धर्म है तुम्हारा? बोला मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर तो सुनो मत बजना, बजना मत घंटा। नहीं बजूंगा। कन्हैया ने चार ग्वाल बालों को खड़ा किया और उसके ऊपर कन्हैया चढ़ा, दो को खड़ा किया उसके ऊपर कन्हैया चढ़ा। छोटे बच्चे हैं कितने, तीन साल के तो है नहीं अभी तक, ढाई तीन साल के हैं। चार बच्चे नीचे खड़े किए, दो उसके ऊपर किए, उसके ऊपर कन्हैया चढ़ा तो भी थोड़ा मटका ऊपर। तो इनके पास एक लाठी और लाठी के ऊपर कीला, पेना कीला लगा हुआ है। लाओ तो लाठी, लाठी लाए, ऐसे करके मटके को ठा से मारा और जैसे मटके को मारा तो मटके से दूध गिरा, दूध गिरा तो कृष्ण के पहले सर के ऊपर गिरा, फिर कृष्ण के सर के ऊपर उसका अभिषेक करके नीचे गिरा। नीचे खड़े खड़े उनके कंधे पे कृष्ण था, हाथ खाली थे, वो हाथ से दूध पीने लगे और कृष्ण पीने लगा। घंटा कहता है भगवान का अभिषेक हो रहा है और मैं बजूं नहीं, ऐसा सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? साक्षात भगवान का अभिषेक और मेरे नीचे हो रहा है और मैं चुप कर जोर से घंटा बजा। कन्हैया ने बोला ये क्या है घंटा? बोला महाराज आपका अभिषेक हो रहा है, अब नहीं बजे तो कब बजेंगे। तब तक गोपियां चारों ओर से जैसे बाहर खड़ी थी, चारों ओर से घर पूरे को घेर लिया। अब पूरा घर घेर लिया गोपियों का, कन्हैया नीचे निकूदा, ग्वाल बाल सीधे हो गए। ग्वाल बाल का कन्हैया ये गोपियां आ गई। बोला चिंता मत करो, जैसे गुरु करे वैसे चेला करे, जैसे मैं करूं वैसे तुम करना। बोला क्या करना है? बोला दूध मुंह में भर लो, जो हाथ में दूध है मुंह में भरो। भर लिया। बोला जो गोपी सामने आए फू, अब जो गोपी आए उसके दूध मुंह में दूध डाले, उसकी आंखें बंद करे वो ये सब भाग गए। इसको बोलते हैं दूध फुफकार लीला। और भाग गए कन्हैया, भाग गए यहां से, दूध सारा पिया भी, बिगाड़ा भी और चले गए भाग के। माखन की चोरी कैसे करते हैं? गोपी बड़ी होशियार थी। पहले तो गोपी कहती थी, यशोदा कहती थी देखो गोपियों तुम्हारे घर में ये बच्चा कितना माखन खाएगा, दे दिया करो ना खाने के लिए। तो एक गोपी कहती है, कन्हैया माखन खाएगा? बोला, क्यों, भीख मंगाऊं तेरे घर का खाऊं? मेरे बाप के घर में 9 लाख गाय हैं, माखन की कमी है? तो गोपी कहती है, फिर चोरी करके क्यों खाता? बोला, मेहनत करके खाता हूं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है चोरी करने में, ऐसे थोड़ी खाता हूं। तो गोपियों ने कहा कि इसको माखन चोरी करते हुए पकड़ना है, यशादा को दिखाना है। तो गोपियों ने खिड़की में घंटा बांध दिया, दरवाजे पे घंटा बांध दिया, छीके में घंटा बांध दिया, उखल में घंटा बांध दिया, घर में घंटे ही घंटे बांध दिए। और पनघट में गई और कृष्ण को निमंत्रण दिया कि आज मेरी सास घर में नहीं है, मक्खन बहुत सुंदर है, आप आके खा लेना। कन्हैया दरवाजे के ऊपर पहुंचा तो घंटे को देखा, खिड़की में से कूदा तो कूदने के लिए गए तो घंटा, अरे आज यहां फिर गोपी ने घंटे बांध दिए, घंटा बजेगा गोपी पकड़ लेगी, तो क्या करना चाहिए? फिर भगवान ने कहा, घंटा के देवता को आगे आदेश करते हैं, कोई घंटा नहीं बजेगा। घंटा कोई नहीं बजा, अंदर सब चले गए, सब अंदर चले गए। कन्हैया ने ऊपर से मक्खन उतारा, मक्खन ग्वालों को दिया, ग्वालों ने मक्खन खाया, और ग्वालों के बाद बंदरों को मक्खन दिया, बंदर खाते खाते ऐसे मुंह करने लगे। कन्हैया ने बोला, मक्खन गोपी का खट्टा लगता है, माखन तो ये बंदर भी नहीं खा रहे, देखूं तो सही गोपी ने हमसे धोखा तो नहीं किया है, कल का मक्खन तो नहीं है, ताजा है कि नहीं। भगवान ने जैसे मक्खन को अपने मुंह में डाला, कन्हैया ने सब घंटे जोर जोर से बजने लगे, अब जोर जोर से घंटे बजने लगे। कन्हैया फिर गुस्से में कहता है, गुस्सा क्या कन्हैया को आता है, लीला में कहते हैं, अरे तुमको कहा था मत बजना, घंटों का देवता कहता है, महाराज किसकी बात माने, शास्त्र में आपने लिखा है भगवान को भोग लगे तो घंटा बजे, तो आपको भोग लग रहा था, आप मक्खन पा रहे थे तो घंटा ना बजे तो और क्या बजे। अब ऐसा घंटा बजा तो सब कूद के भागने लगे, कोई कहीं से भागा, कोई कहीं से भागा। गोपी ने आगे कन्हैये को बांध लिया, एक खंभे में बांध दिया, और दूसरी गोपियों को बुलाने के लिए गई कि आज कन्हैया को बांध के आई हूं, आओ सब मिलके पकड़ के यशोदा को बताते हैं। और जैसे वो वापस आए तो कन्हैया खुला खड़ा है, कन्हैया खुला खड़ा है, तो गोपी कहते, अरे तेरे को बांध के गई थी, तू खुल कैसे गया? अरे गोपी तेरे को बांधना नहीं आता है, तू खड़ी हो जा, तेरे को दिखाऊं कैसे बांधते हैं। गोपी को खड़ी करके उस खंभे के अंदर बांधा और बांध के कन्हैया भाग गया। वो गोपियां आए तो देखे गोपी बंधी हुई है, कन्हैया तो घर में है नहीं, तो गोपियां उसका मजाक, बोला नहीं मेरे को बांध के चला गया इस तरीके से, वो तो खुल गया था। तो ऐसे आगे की लीला में एक और गोपी कहती है, मरकान भक्षम विभज्जति सचेतनाति भांडम विनंती। जब बंदर भी मक्खन नहीं खाते हैं तो हमारे बर्तन को तोड़ता, इतना खराब मक्खन रखा है, बंदर भी नहीं खाते हैं, हमारा मटका भी फोड़ के जाता है। मक्खन का दुख नहीं है, मटके फोड़ने का दुख है, क्योंकि हमारे मटके हमारी सास के जमाने के हैं, इन मटकों ने बहुत दूध दही खाया है, ये चिकने मटके हैं, ये मटका ही तोड़ के चला जाता है। विनंती तोड़ता है भांडम बर्तन, हमारे बर्तन तोड़ के चला जाता है। एक दूसरी गोपी कहती है, द्रव्य लाभे सग्रह कुपितो। अगर हमारे घर में कभी आए और कुछ न मिले ना तो बहुत क्रोधित होता है, घर में घुस जाए न दूध मिले न दही मिले न मक्खन मिले तो बहुत क्रोधित होता है। बोला फिर क्या करता है क्रोध में? तो कहते हैं, याति उपकरोश तोकान। जाते हुए हमारे सोए हुए बच्चों को चुंटी मार के जगा जग जाता है, कौन सी लीला हो रही है? बोला लीला ये हो रही है, एक गोपी ने कहा, कन्हैया ये बच्चा हमारा रो रहा है, इसको तू जरा चुप करा देगा, तेरे को मक्खन खिला दूंगी, तेरे को मक्खन खिला दूंगी। बच्चे को हाँ, कन्हैया बोलता है मैं ऐसा इसको अच्छी तरह से सुला दूंगा, तू गोपी मक्खन तो देगी ना, जरूर दूंगी मक्खन तेरे को। कन्हैया ने झूले में डाल के कहता, अरे भैया तू सो जा, गैया चराने साथ ले जाऊंगा तेरे को, मक्खन दूध खाएंगे, सो जा भैया। वो बच्चा सो गया। बच्चा जब सो गया, कन्हैया बोला, गोपी मक्खन दे। अरे कन्हैया, आज मक्खन तो घर में निकला ही नहीं। कोई बात नहीं, दही तो दे दे। अरे दही तो आज मक्खी पड़ गई। अरे छाछ है गोपी? कन्हैया, छाछ खट्टी है। हमसे बच्चा सुलाती है और घर में दूध नहीं, दही नहीं, छाछ नहीं, तेरे बाप का नौकर हूं, ले चुंटी बच्चे को, वापस जगा देता हूं, क्यों तुम्हारे बच्चे की सेवा करूं। और बच्चे को ऐसे चुंटी मार के भाग जाता है। एक गोपी खड़ी थी पानी भरने के लिए पनघट के ऊपर, एक मटका तो अपने आप सर पे रखा। कन्हैया, ये मटका मेरे को सहायता करके सर के ऊपर रखो, तेरे बाप का नौकर हूं, तेरा मटका सर के ऊपर उठाऊं। गोपी बिचारी लज्जित हुई, दूसरे किसी को कहा, मटका उठा के घर के अंदर पहुंची है तो कन्हैया पहले खड़ा है, आओ आओ गोपी, तेरा मटका उतार दूं। गोपी कहती है, पहले तो मटका उठा नहीं रहा था, अब उतारने के लिए क्यों आ गया? अरे गोपी, हम आप भक्तों के सर के ऊपर भार चढ़ाने के लिए नहीं है, आपका भार उतारने के लिए है। कहां तेरे सर के ऊपर मैं भार रखूंगा, तेरा भार आ जा, उतार दूं गोपी। ऐसे भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। ये लीलाएं 3 साल 4 महीने तक गोकुल में करते हैं। क्यों करते हैं? जो वात्सल्य प्रेम के भक्त हैं, जो भगवान को अपना लाला मानती हैं, बेटा मानती हैं, उन सारे भक्तों को सुख देने के लिए ऐसे लीलाएं करते हैं। और इन लीलाओं को देखकर सबका मन करता है, कन्हैया हमारे घर में ऐसी लीला कब करेगा। आगे आप आज ही लीला का श्रवण हम करेंगे। सारी गोपियां कहती थी कि कन्हैया यशोदा का दूध पीता है, हमारा दूध कब किए। सारी गैया कहती थी, अरे केवल नंद के घर में कुछ गायों का दूध कन्हैया पीता है, हमारा दूध कब पिएगा। सारे ब्रज के वासी, अरे आवाज कहीं पीछे आ रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। क्या कह रहे थे? कौन दूध पीते हैं? सब कहते हैं कि हमारा दूध पिए कन्हैया। तो ब्रज में सबकी इच्छा होती है कन्हैया हमारे घर में आए। तो ऐसे बहुत सुंदर मधुर लीलाओं को सबको बालक कन्हैया ने सुख दिया। और आगे कहती हैं गोपियां, हस्ताग्राहे रचयन्ति विधिम पीठ उलकुल आद्यस। जहां नजदीक में सामान है तो हाथ से उठा लेता है, अगर ऊपर रखती हैं तो छोटे से पीठ के ऊपर चढ़ता है, और ज्यादा ऊपर रखती हैं तो उखल के ऊपर चढ़ता है। तो ये इसने बहुत से हमारे घर में सामान को भी देख रखा है कि ऊपर कैसे पहुंचना चाहिए। छिद्रम है अंतर निहित, और अगर नहीं पहुंचता है तो फिर लाठी से उसके अंदर छिद्र करके सारा सामान गिराता तो है ही। गोपियां कहती हैं, पहले तो जहां पड़ा होता है नीचे से तो हमने ऊपर रखना शुरू किया, तो फिर ये पीठ के ऊपर चढ़ता है, तो हमने और ऊपर रखा तो ये उखल के ऊपर चढ़ता है, हमने ऊपर टांगा तो पहुंचता नहीं है तो उसके अंदर छिद्र कर देता है और फिर नीचे होकर उसको खा देता है। व्यो निक्य भांडेशु तद्वित ध्वांतागरे धृत मणि। अब यशोदा कहती है, फिर तुम छुपा के किसी अंधेरे कमरे में क्यों नहीं रखती हो? बोला, अंधेरे कमरे में रखा, लेकिन इसके गले में जो ये मणि मंडल पहना है इतनी चमकती है कि अंदर प्रकाश हो जाता है। तो यशोदा ने कहा, फिर इसके ये हार उतार दो। नहीं उतारोगे? नहीं उतारो तो अच्छा नहीं लगेगा, भले पहना रहे लेकिन इतना होशियार है कि अंधेरे कमरे में भी रखते हैं तो इसको मणि गण स्वंगम अर्थ, इसके जो अंग के ऊपर मणियां लगी हैं उससे इतना प्रकाश निकलता है, अंधेरा अंधेरा कमरा प्रकाशमय हो जाता है, अर्थ प्रदीपम, और इनके काम के लिए इतनी रोशनी होती है कि मटके को ढूंढ निकालते हैं। काले गोपियो यरही ग्रह कृत्येशु, बोला आता भी उस वक्त है जब हम किसी काम में लगी होती, हमने को नहीं देखता है तब अंदर घुसता है, और जब हम किसी काम में हो कहीं हम, जैसे अब हम चूल्हे के ऊपर घी चढ़ा हुआ है और हम पूरी उसके ऊपर तल रही है तब आके अंदर, अब हम उसको छोड़ के तो जा नहीं सकती, तो वो समय भी ऐसा ढूंढ के आता है और बड़ी बुद्धिमानी से आके ये सारा कार्य करता है। अब एक गोपी कहती है अगर घर में कुछ नहीं मिलता तो जहां हम चूल्हा चौका लेप कर साफ करते हैं ना वहीं आके मूत के चला जाता है। लिखा है, मैंने ये लिखा है, कुरुते महि आदिनि वास्तव, वास्तव के, वास्तव का मतलब सुंदर स्थान, जिसको सुंदर करके हम वास्तु के हिसाब से ठीक करके रखते हैं, मिहयंदी मिह आदिनि, वहां के ये मलमूत्र त्याग देते। क्या हुआ, एक गोपी ने घर को बहुत सजाया, बेचारी थी गरीब, कुछ घर में था नहीं, लेप के पोच के कहा कन्हैया आज हमारे घर में पधारो, कन्हैया ने सब मित्रों को कहा हमारी बहुत प्रिय गोपी ने हमको घर में बुलाया है चलो चलते हैं। उधर गए सब जगह में बर्तन देखे कुछ भी नहीं, कन्हैया ने कहा इसके घर में कुछ भी नहीं, अब क्या करने, बोला एक और लीला रहती है वो करते, बोला क्या करना है, बोला जहां जिसको जो भी दीर्घ शंका आती है लघु शंका आती है बस करके चलो। तो जो जहां बैठा था बच्चे, तो कहते 2-2.5 साल के बच्चे हैं, किसी ने कहा पेशाब क्या क्या किया, बोला इस लीला से क्या लेना है क्या सीखना है, बोला कोई गरीब दरिद्र है और भगवान या भगवान के भक्त वहां मलमूत्र त्यागते हैं तो उसके घर में धन धान्य बहुत बढ़ जाता है, तो भगवान ने कहा इसके घर में अब अपार धन आ जाएगा। इसका भाव क्या है, बोला ये संसार का धन मलमूत्र के समान है, इसको संभालने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये गोपी कहती है हमारे घर में कभी कभी कुछ नहीं अगर इसको मिलता है तो फिर ये इस तरीके से करके चलाता है। स्त्रम स्त्री भी ही भय नयन श्री मुखा अलोकिन, और कभी हम इसके पीछे जाते हैं तो ये भयभीत तो इसको करते हैं तो ये बहुत बड़ा क्रोध में कभी कभी मलमूत्र त्याग देता है, और हमारे घर के अंदर ये बड़ा होशियार चोर है, तुम्हारे सामने ऐसे बैठा है जैसे बहुत बड़ा महात्मा है, यहां बड़ा चुप करके बैठा है जैसे इस जैसा शांत लड़का कोई है नहीं, लेकिन हमारे घर में बड़ा उद्यम बना चाहता है। और कभी गोपियां देखती है कि घर में गोपियों को आंखें देखता है तो कन्हैया की आंखें भयभीत हो जाती है, क्यों भयभीत होती, कहीं मां कहीं मां को शिकायत करेंगी, मां कहीं डांटे नहीं, तो कन्हैया भयभीत होके गोपियों की ओर देखता है, लेकिन गोपियां जैसे कृष्ण के सुंदर मुख को देखती हैं तो उनको शिकायत करने से पहले ही हंसी आ जाती है और यशोदा उनको डांटती नहीं। अब भगवान एक और लीला करने जा रहे हैं, देखा कन्हैया ने कि इतनी सारी शिकायतें मैया को, दूध दही की चोरी की आई, माखन की चोरी की आई, मैया ने डांटा ही नहीं, अगर मैया डांटेगी नहीं तो उसके प्रेम का पता कैसे लगेगा, डांटेगी तो लगेगा मेरा अपना बेटा है तो हंस जाती है, कोई ऐसी लीला करनी चाहिए कि मैया डांटे। तो अब कन्हैया ग्वाल बालों को और बलराम जी के साथ खेलने के लिए गए जमुना के किनारे थोड़ा सा दूर, और अब 9-10 बजने लगे तो सबने कहा चलो कन्हैया घर में चलें नाश्ता करना है कलेवा करेंगे, नहीं आज इधर खेलेंगे, बोला खाओगे क्या, बोला मिट्टी खाऊंगा, और ऐसे कह के कन्हैया ने मिट्टी उठाई और मुख में डाली, सब दौड़ते हुए आए, यशोदा को शिकायत लगाई मैया कन्हैया मिट्टी खा रहा है, बलराम जी ने कहा मां कन्हैया मिट्टी खा रहा है, अरे यशोदा मई आज कहती है मक्खन खाए, चोरी करके खाए, अपने घर का खाए, कुछ होना तो हानि तो नहीं होगी ना, मिट्टी खाएगा तो खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। लाठी हाथ में उठाई, भागती हुई उधर गई, कन्हैया बैठा है, मुंह में मिट्टी पड़ी है। मैया ने जाके हाथ पकड़ा, हाथ से मिट्टी खाई थी, हाथ को पकड़ लिया और कहा आपने मिट्टी खाई? ना, तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, मैया मेरे से झगड़ के गए हैं, लड़ाई करके गए हैं, मेरी शिकायत नहीं, ये मुझसे गुस्से में, इसलिए ऐसे कह रहे हैं। बोला क्यों गुस्से में? मक्खन खाता था, सबको बांट के खाता था, मट्टी अकेला खा रहा था, सबने कहा ये कोई मित्रता है, मट्टी भी साथ में खानी चाहिए ना, हमको तो खिलाता नहीं है, तो जाके शिकायत कर दी। तो मैया ने कहा तुमसे ये नाराज है, तेरा बड़ा भाई बलराम शिकायत कर रहा है तेरी, कि तुमने मट्टी खाई है, और बलराम सामने खड़ा है। अब बलराम के सामने ना करता है तो डरता है कि ये मारेगा, और हाँ करता है तो मैया मारेगी, दोनों बीच के, दोनों के बीच में फंस गया। बोला मैया तू समझती है कि ये सफेद है, ये अंदर का बहुत काला है, देखने का ये अच्छा है, अंदर का काला है। अरे मेरे को रोज चिढ़ाता है, कहता ये छोटा गोरी नंद गोरा, तू काला मोल का लाए हैं, तेरे को खिलौना है हमारे घर का। मैया तू तो मेरी मैया है ना, ये सब झूठ बोलते हैं। तो क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया? नहीं, इसका संस्कृत में अर्थ है माँ माँ तुम मट्टी क्या कहती हो, मैंने तो पूरा ब्रह्मांड खाया है, मट्टी नहीं मैंने पूरा ब्रह्मांड खाया है, तुम्हारे को विश्वास नहीं आता है, तू मेरी माँ है ना, तू इनकी बात क्यों सुन रही है? माँ के मन में मोह पैदा कर रहा है, तू मेरी मैया है ना, तेरे को विश्वास नहीं आता है, मेरा मुंह खोल के देख ले। यशोदा ने कहा मुंह खोलो, कन्हैया मिट्टी निकल गया, मुंह खोला, मुंह खोला तो यशोदा ने देखा अंदर ब्रह्मांड, और यही ब्रह्मांड देखा, और जमुना बहती देखी, नंद भवन देखा, और जमुना जी के तट पे यशोदा देखी, यशोदा की गोद में कन्हैया देखा। यशोदा ने देखा कि ये क्या, इस बेटे के मुख में इतना बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य कहां से आ गया? यशोदा कहती है भगवान मैं आपके शरण में हूं, ये मैं क्या देख रही हूं, मुझे क्या हो गया? और भगवान 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 करने लगी। भगवान ने कहा कहीं मेरी मैया ने मेरे को भगवान समझ लिया, और मेरे को कहीं कमरे में कोई कुड़ को छोटे से कटोरे में बिठा, कठोंदरे में बिठा दिया और आरती करना शुरू कर दी, तो मैं तो गैया चराने नहीं जा सकूंगा। तो अपनी वैष्णवी माया मैया माँ के ऊपर ऐसे घुमाई कि मैया को कुछ देखना नहीं आ रहा था, वो अपनी आंखों को ऐसे करके कन्हैया को उठा के दूध पिलाने लगी, और माँ का भाव वापस आ गया और कन्हैया दूध पीने लगा। तो मट्टी क्यों खाई थी भगवान ने? रज, रज कहते हैं, मैं मिट्टी को कहते हैं रज। भगवान ने कहा बहुत से असुरों को मारना है, रज को थोड़ा मुख में लगाऊं तो रजोगुण आएगा तो मारूंगा, नहीं तो कहां से मारूंगा, ऐसे प्रेम से तो मरेंगे नहीं ये। बोला मट्टी क्यों खाई? बोला ब्रज की रज भगवान के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, और सबको ब्रज की रज को चखने का स्वाद करने का मन किया। भगवान ने कहा सबका मन आज संतुष्ट करके ब्रज की रज खा के इनको संतुष्ट कर देता हूँ। ये ब्रज की रज में भगवान ने अपनी कृपा को छुपा कर रखा, और स्वयं भगवान ब्रज रज का पान कर रहे हैं। ये कथा सुनकर सुखदेव महाराज से परीक्षित जी कहते हैं नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि उनके गोद में बैठकर दूध पी रहा है कन्हैया? कौन सा नंद ने पुण्य किया कि उसके घर में ये बालक जन्म हुआ, और यशोदा का कितना बड़ा सौभाग्य है कि इसका दूध कृष्ण पी रहा है? तो सुखदेव महाराज कहते हैं एक धरा और द्रोण नाम के दो वसु थे, धरा स्त्री और द्रोण पुरुष। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, और वो नंद और यशोदा के रूप में आए, और उन्होंने ब्रह्मा जी के कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कहने के बाद सुखदेव गोस्वामी को थोड़ा सा असंतुष्टि हो गई, का ब्रह्मा जी की आशीर्वाद से कैसे हो सकता है, नंद और यशोदा तो भगवान के नित्य माता पिता हैं। तो एक लीला अपने आप सुखदेव महाराज कहने शुरू करते हैं कहते एक दिन की बात है। कौन से दिन की बात है? बोला एक दिन की बात है, दिवाली के दिन की बात है, कार्तिक का महीना है, दिवाली का दिन है, कन्हैया 3 साल 1-2 महीने का हुआ है। यशोदा मैया ने कहा रोज गोपियां शिकायत लगाने आती हैं कि हमारे घर का दूध दही चुरा के खाता है, तो मैं समझती हूं कि ये मेरे घर में सेवकाएं अच्छा दूध दही और मक्खन नहीं बनाती होंगी, और कल तो वैसे भी हमारे यहाँ इंद्र पूजा का उत्सव है, काम घर में बहुत ज्यादा है, तो कल मैं अपने हाथ से मक्खन निकालूंगी, अपने बच्चे को खिलाऊंगी, फिर देखूं किसी के घर कैसे जाता है चोरी करने। तो नंद गहनी नंद के घर में आनंद को बिखेरने वाली यशोदा ने सबको दूसरे काम में लगा दिया, स्वयं मही दही मथनती और स्वयं दही को मंथन करने लग गई, और जब मंथन दही का कर रही थी तो कन्हैया की बाल चरितानि गायंती, कन्हैया के बाल लीलाओं का गान कर रही थी, शरीर से तो सेवा कर रही थी, मंथन का काम कर रही थी, मन से कृष्ण का चिंतन कर रही थी कि सोया हुआ है आज जागेगा, ये मक्खन खाएगा फिर किसी के घर में नहीं जाएगा, और वाणी से कृष्ण के लीलाओं का गुणगान कर रही थी, जो जो कृष्ण ने लीलाएं की थी उनके गीत बना के रखे थे वो गीत गा रही थी। एक दिन कन्हैया मैया के पीछे आके खड़ा हो गया और रोने लगा, तो गोपियों ने कहा कि कन्हैया देखो आकाश में देखो बड़ा मक्खन का गोला पड़ा है, चांद को दिखा दिया। अब कन्हैया कहता है मेरे को ये मक्खन खिलाओ मैया, मेरे को वो मक्खन खिलाओ, चांद मेरे को ला के दो, मक्खन का गोला पड़ा है। मैया कहते देखो उस गोले के ऊपर काला निशान है ना, इसमें विष लगा हुआ है, इसलिए इसको कोई नहीं खाता। अच्छा इसके अंदर विष लगा है मैया? नहीं, मेरे को यही चाहिए। अब मैया ने क्या किया, नीचे घी का पिघाल के रख दिया, उसके अंदर चंद्रमा दिखाया, बोला ये पड़ा है तेरा गोला खाओ। तो लिखा है मैया एक दिन कहता चंदा को लाके दो, ऐसे गीत बनाए हुए हैं बहुत सुंदर, जो जो कन्हैया ने लीलाएं की है मैया गा रही, मैया दही का मंथन कर रही है, और मैया सुबह सवेले उठी है, पीले रंग के अलसी के पुष्पों की रेशमी साड़ी को पहना है, बालों के अंदर मालती के फूल को लगाया है, कमर के ऊपर कस के पट्टा बांधा है, कानों में सुंदर कुंडल पहने हैं, हाथों में बहुत अच्छे बाजूबंद पहने हैं, और मैया उम्र की बड़ी है, मंथन करने के लिए किसी मंच के ऊपर बैठी है और मंथन कर रही है। जब मैया मंथन कर रही है तो माँ को पसीना हो रहा है, बालों से पसीना नीचे आ रहा है, फूल झर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, इस तरह से दूध चूके बाहर आ रहा है, ये दूध कह रहा है मैया आज अगर मक्खन खिलाएगी तो हमको कन्हैया पिएगा नहीं, तो हम क्या करें, हमको भी तो माँ को याद खिलाना चाहिए कि मैम हम तुम्हारे बच्चे के प्रेम में बाहर निकल के आ रहे हैं। और मैया जब ऐसे प्रेम से मंथन कर रही थी तो कन्हैया सो रहा था। कन्हैया ने सोचा कि मैंने तो नारद जी को कहा है जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहां मैं आ जाता हूं, मेरी माँ कीर्तन कर रही है और मैं सोया रहूं तो लोग कहेंगे माँ के पास नहीं गया तो हमारे पास कहां से आएगा। तो कन्हैया जागा, बिस्तर के ऊपर मैया मैया किया, मैया वहां है ही नहीं, बिस्तर के ऊपर मैया साथ में सोती थी, आज मैया है नहीं। आंखें मसल के आवाज सुना, धम धम मंथन चल रहा है, हाथ की चूड़िया खन खन, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ओ ये सुन के कहीं ना कहीं मैया कन्हैया बोलता है वो कीर्तन हो रहा है, मैया कीर्तन कर रही है। अब नीचे उतरा, लटक के नीचे उतरा उतरा, और प्रेम माँ के प्रेम के ऊपर चढ़ के, प्रेम आभान प्रेम के ऊपर चढ़ के, और माँ के प्रेम के कारण उठ के माँ के सामने आके खड़ा हो गया, और मैया आंखें बंद करके मंथन कर रही है। कन्हैया ने कहा गीत मेरा गा रही है, मक्खन मेरे लिए निकाल रही है, मैं आके सामने खड़ा हुआ हूँ देख नहीं रही है। कन्हैया ने सोचा इसका अपनी ओर ध्यान कैसे आकर्षित करूँ, बड़ी चालाकी से न रोया न मैया को हाथ लगाया, सीधा मंथनी को पकड़ लिया, मंथनी पकड़ लिया तो काम रुक गया, काम रुक गया तो मैया ने आंख खोली और मैया मुस्कुराई। जैसे मैया मुस्कुराई, कन्हैया उसकी गोद में चढ़ गया, और कन्हैया जैसे गोद में चढ़ गया, मैया ने स्तन दे दिया मुख में, और कृष्ण दूध पीना शुरू कर दिया, और मैया ने जो मक्खन निकालनी थी उसको ढक दिया। अब सर्दी का मौसम है, कार्तिक का महीना है, ये मक्खन नहीं निकलेगा, ये मटका बंद कर दिया। इससे बड़ा अच्छा संकेत मिलता है माताओं को, बच्चा कहे कि मैं भूखा हूं तो 100 काम छोड़ के उसको प्रेम से पहले खिलाना चाहिए। बच्चा आ गया है और दूध मांग रहा है और मैया मंथन करती रहे तो फिर मैया का प्रेम नहीं दिखेगा। और दूसरा कंपटीशन बेटे और माँ में हो गई, माँ कहती है मक्खन खिलाऊंगी, बेटा कहता है तेरा दूध पीऊंगा, मैं बाहर का मक्खन नहीं खाऊंगा, तो यहां बेटा जीत गया, माँ हार गई। अब मैया प्रेम से दूध दे रही है और कृष्ण उसको मुस्कुरा मुस्कुरा के उसके मुख को देख रहा है। माँ और बेटे के अंदर बहुत प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। मैया दूध दे रही है और बच्चा दूध पीते पीते मुंह बाहर निकाल के थोड़ा मुस्कुरा के माँ को देख लेता है। उस मुस्कुराहट से माँ खुश हो जाती है और दूध पी के कन्हैया खुश हो जाता है। माँ बेटे के बीच में बहुत बड़ा स्नेह का आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रही है। इसी को कहते हैं कि माँ और बेटे के बीच में संबंध दूध पिलाने से होता है। जब माँ बेटे को दूध पिलाती है बच्चों को, तो बच्चे उस माँ के चेहरे को ऐसा याद कर लेते हैं, 1000 स्त्री में अपनी माँ को पहचान लेते हैं। पहचानते कि नहीं पहचानते? और 1000 बच्चों के रोने में माँ अपने बच्चे के रोने को पहचान लेती है। पहचानती है कि नहीं पहचानती? तो दोनों के बीच में संबंध कब स्थापित होता है? जब माँ दूध पिलाती है, क्योंकि बच्चे का सिर्फ पीने खाने पीने के अलावा और कुछ पता नहीं होता है। जो पिलाता है वही उसको अच्छा लगता है, वही उसको माँ की तरह समझता है। तो इसलिए देवियों को भगवान संतान दे तो उदारता से दूध पिलाना चाहिए। इसलिए पुराने जमाने में माताओं को ये कहने का अधिकार होता था, बेटा मेरे दूध की लाज रखना, और बेटा भी कहता था माँ तेरे दूध का कर्ज उतारूंगा। अब एक माँ ने कहा, बेटा, बोला क्या है मैया, बोला दूध वाले का कर्जा उतार दे। दूध तो पिलाया नहीं तो दूध वाले का कर्जा उतार, वो भी मुश्किल पड़ रहा है। और फिर हम ये कथा करते हैं तो सदा ये कहते हैं, हमको कहने में अच्छा लगता है क्योंकि ये प्रेरणा का सूत्र है। आजकल हमारी नौजवान बच्चियां बच्चों को दूध नहीं पिलाती, पता नहीं किसने उनके दिमाग में गलत बात बिठा दी है कि दूध पिलाने से सुंदरता समाप्त हो जाती है। तो फिर बच्चों को माँ अपना दूध न पिलाकर, बच्चे को तो पिलाना पड़ेगा, दूध कैसे पिलाती है? बोतल में पिलाती है। ये जो बोतल में पिलाने वाला जब से रवाज शुरू हुआ, तो बच्चे को बोतल दो, बच्चा ऐसे पकड़ेगा बोतल, हो मेरी माँ मुस्कुराएगा, उसको देखेगा, अरे तू ही मेरा प्राण है माँ, ऐसा बोतल के साथ प्रेम हो जाएगा। 12 साल का नहीं हुआ, 10 साल का होगा तो कहेगा ला 50 रुपये माँ, क्या करेगा, पाकोला कोकोला कोको कोला पियूंगा, अरे कोको कोला मत पियो, मेरी माँ है, बोतल से मेरा रिश्ता है। और 25 साल तक आते आते बियर का बोतल, जानी वाकर का बोतल, अरे क्या कर रहा है, मेरी माँ है, कैसे छोड़ू इसको। ऐसे बोतल के साथ संबंध स्थापित होता है। 35-40 साल तक अस्पताल में बोतल ऊपर टांगी हुई, कहते अरे मैया इतनी ऊपर कहाँ चली गई, मैं ऊपर आ रहा हूं, मैया ऊपर मैं भी ऊपर, ओ बेचारा रवाना होने लगता है। तो मेरी माँ बोतल का दूध मत पिलाओ, नहीं तो बच्चों को बोतल की आदत पड़ जाएगी, ये बोतलों के पीछे गया तो गया, रोकने से नहीं रुकेगा वो। माँ और बेटे में दूध पिलाने का ये प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था और चूल्हे के ऊपर मैया ने दूध रखा था, जो दूध उबल रहा था उसकी रबड़ी बना दी थी कन्हैया के लिए। वो दूध सोच रहा है कि कन्हैया अगर इतना प्रेम से माँ का दूध पिएगा तो पेट भर जाएगा, आज मेरे को कन्हैया की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा तो मैं जी के क्या करूं, मैं आप घात करता हूं, अग्नि में कूद जाता हूं। और दूध उफन के नीचे गया, छू का आवाज आया, मैया ने कन्हैया को नीचे रखा, पूतना 6 दिन का उतार नहीं पाई और कन्हैया 3 साल से बड़ा है, मैया ने नीचे रखा और मैया भागती हुई गई और दूध को लकड़ी को बाहर निकाली और थोड़ा पानी का उसके ऊपर छींटा लगाया। दूध को लज्जा आई कि मैं माँ और बेटे के बीच में बाधा बन गया, मुंह लटका के वापस अपने पतेले में चला गया। कन्हैया यहां सोचता है, मैं खीर सागर में रहने वाला इसका बेटा बना और सागर छोड़ के आया ये 2 किलो दूध के लिए मुझे पटक के चली गई, ये कैसी माँ है। मैं भूखा, क्या होता दूध गिर जाता तो, मेरे को पटक के चली गई दूध को रक्षा करने के लिए। मैं दिखाऊंगा क्या कर सकता हूं, ये मटके के सुबह से मेरी माँ मेरे को छोड़ के पलंग के ऊपर इस मटका असुर के पीछे पड़ी है, इसी का मंथन कर रही है, इसका नाम निशान तोड़ दूंगा। और कन्हैया ने एक मसाला पीसने का पत्थर उठाया, अपने हाथ के कंगन को हाथ से पकड़ा और जो मटका जहां भरा था वहां ठा करके मारा और वो दूध दही जो मंथन हो रहा था सब बह के बाहर निकला और कन्हैया नाचने लगा उसके ऊपर। मैया को पता लगेगा अब मटका फट गया, मटका फूट गया, घर का बर्तन तोड़ेगा, गुस्सा करेगा, बच्चा क्या करेगा, बर्तन तोड़ेगा और क्या करेगा। और फिर कन्हैया को डर लगा कि मैया मारेगी, ये जो मटका फूटा है मैया मारेगी। भागा, कहां जाएगा, दूसरे कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में क्या किया, बोला मां को दिखाऊंगा मैं इतना भूखा हूं, कल का माखन खा के पेट भर रहा हूं, तुम तो छोड़ के मेरे को चली गई। उधर जाके ऊपर से मटका उका उतारा माखन का, उखल के ऊपर बैठा और बंदर को मटका मक्खन खिला रहा है, कौए आए हैं उनको मक्खन फेंक रहा है, खुद मक्खन खा रहा है। मैया दूध को उतार के वापस आई और देखा मटका फटा फूट गया, दही सारा बह गया। मैया हंसने लगी, हे बड़ा शरारती हो गया, देखो थोड़ी देर छोड़ा मटका तो वो फोड़ दिया, पांव के निशानों को देखा। और मैया को लगा अरे अभी तो वो सुबह का 5 बजा है, 4 बजे मैंने मंथन शुरू किया है, ये भय के कारण कहीं जंगल में चला गया तो भूखा है, कौन ढूंढने जाएगा, अभी तो सब काम पे, अभी तो कोई गैया दोने चले गए हैं, सब कोई है नहीं। मैया को थोड़ा सा भय हुआ कि बच्चे को देख लूं कहां गया है, पांव के निशान पड़े थे उनको देखा और देखा कि दूसरे कमरे में बैठा है उखल के ऊपर और मक्खन का मटका हाथ में रखा हुआ है और ऐसे मक्खन खा रहा है। तो मैया दबे पांव से पीछे से जाने लगी कि मुझे न देखे ताकि मैं इसको पकड़ लूं कहीं भाग न जाए। लेकिन माँ का बेटा माँ से होशियार था, ऐसे देखा मैया पीछे आ रही है, कुफल से कूदा और भागा आगे। मैया कृष्ण भागा पीछे मैया भागी, मैया के हाथ में लाठी है। आज कन्हैया घर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गए, बाहर निकल गया तो मैया भी बाहर चली गई। कन्हैया ने बोला मैया बाहर थोड़ी आएगी, लेकिन मैया आज पीछे बाहर आ गई। कन्हैया आगे दौड़ रहा है, मैया पीछे दौड़ रही है। सुखदेव महाराज लिखते हैं, योगी ध्यान में थोड़ी देर जिसका ध्यान करते हैं उसके मन में टिकता नहीं है, उसको ये गोपी पकड़ने के लिए जा रही है, साक्षात पकड़ना चाहती है। और फिर कहते हैं कन्हैया छोटा सा बच्चा है, तेज दौड़ रहा है, मैया तो बड़ी उम्र की है, स्तन भारी है, नितंब भारी है, उसको दौड़ने में कठिनाई हो रही है, लेकिन मैया भी हिम्मत नहीं हार रही है। और मैया के सारे फूल जो थे वो नीचे गिर रहे हैं, मालती के फूल जो उसके सर के ऊपर लगे हुए थे वो नीचे गिर रहे हैं। बोला मालती के फूल वेदों की ऋचाएं हैं और वो कहती हैं जो भगवान के पीछे भागता है उसके सर के ऊपर हम शोभा नहीं देते हैं, उसके चरणों में उसके अनुगामी हम बनना चाहती हैं, तो ये वेद की ऋचाएं उसके पीछे चल रही हैं। मैया ने कन्हैया को पीछे से पकड़ लिया, कन्हैया पकड़ा गया और मैया कहती है मटका फोड़ा, नहीं तो कैसे फूटा? तुम जल्दी उठ के गई थी, तुम्हारे पांव में चांदी का इतना बड़ा कड़ा लगा है, वो लगा होगा, टूट गया होगा। तो बंदर को मक्खन कौन खिला रहा था? जिसने बंदर बनाए। अरे तू बंदर है, बोला मैं पकड़ क्यों रही, छोड़ जाऊं जंगल में? मैया के हाथ में लाठी है, मैया कहती है मटका फोड़ता है, दूसरों के घर की शिकायत आती है, अब अपने घर का भी मटका फोड़ दिया। कहते लाठी पहले फेंको, लाठी फेंको, और आंखों से आंसू बहा रहा है। एक हाथ तो मैया ने पकड़ लिया, एक हाथ से काजल निकाल रहा है, सारा काजल बह के बाहर निकल आया। तेरा काजल भी निकाल ले, सब कुछ ले ले अपना वापस, मैया नहीं चाहिए मुझे तेरा कुछ भी, क्यों मेरे को पकड़ा है, ये लाठी फेंको, लाठी फेंको। सुखदेव महाराज कहते हैं कि अर्भक वत्सला, छोटे बच्चों से प्रेम करने वाली यशोदा कोई इसको मारना थोड़ी चाह रही थी, थोड़ा सा डराना चाह रही थी, गुरा रही थी बच्चे को, डरते हुए देखकर कहीं इसको बुखार ना आ जाए, मैया ने लाठी फेंक दी और फिर कहा कन्हैया आज तेरे को खेलने जाने नहीं दूंगी, आज तेरे को ये उखल के साथ बांध दूंगी, और अपने पालों के अंदर जो रस्सी थी रेशमी उसको उखल में बांधी और कन्हैया की कमर में बांधने के लिए रस्सी को घुमाया तो रस्सी दो उंगल छोटी हो गई, दूसरी रस्सी को निकाला, दो रस्सियां जोड़ी, रस्सी दो उंगल छोटी हो गई। तब तक बहुत सी गोपियां इकट्ठी हो गई चारों ओर से और सेवकों को कहा एक और रस्सी लाओ, एक और रस्सी लाओ, रस्सी के साथ रस्सी जोड़ी जा रही है, रस्सी छोटी नहीं रही हो रही है, कमर कन्हैया की मोटी नहीं हो रही है, काला धागा नजर का बंधा हुआ है वो पहले से बंधा पड़ा है, मुट्ठी भर कमर है लेकिन दो उंगल छोटी है। अब गोपियां जो खड़ी हैं बड़ी बड़ी वो कहती हैं अरे यशोदा तू खुश हो जा, तेरे बच्चे के भाग्य में बंधन नहीं लिखा है, छोड़ दे। यशोदा कहती है क्यों रे, तेरे घर में माखन खाता है मटका फोड़ता है तब शिकायत लगाती हो, और मेरे घर का मटका फोड़ा तो छोड़ दो, आज शाम हो जाए तो भी इसको बांध के छोड़ूंगी। पहली बार कन्हैया ने मां की ओर देखा, मां के सर से पसीना बह रहा था, श्रृंगार सारा बिखर गया था, मां थक हार चुकी थी। कन्हैया के हृदय में करुणा आ गई, कृपा का उदय हुआ और मैया ने गांठ लगाई और कन्हैया बंध गया। बोला पहले रस्सी छोटी क्यों हो रही थी? भगवान की संकल्प शक्ति भगवान को बंधन में डाल नहीं रही थी, डालने नहीं दे रही थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिसके न कुछ अंदर है न कुछ बाहर है, ये ब्रह्मांड सारा जिसका स्वरूप है उसके चारों ओर रस्सी कहां से घुमाओगे, कैसे इसको बांध सकते हो? लेकिन फिर बंध कैसे गए? बोला दो उंगल रस्सी क्यों छोटी थी? पहला उंगल है भक्त का साधन, भक्त जब अपने श्रृंगार की परवाह न करे, अपने शरीर की परवाह न करे और लथपथ पसीने से हो जाए तब तक भगवान को पाने के काम में जुटा रहे, तो ये तो है एक उंगल भक्त का साधन। दूसरा उंगल है भगवान की कृपा, भगवान जब अनुग्रह करते हैं, जब कृपा करते हैं, जब उनकी कृपा का उदय होता है तो भगवान भक्त के वश में आ जाते हैं, उसके प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। तो हमको प्रेरणा ये मिलती है कि हमारा साधन बहुत प्रबल होना चाहिए, वो काम टाइम पास वाला साधन नहीं होना चाहिए, अपने शरीर को भुलाकर भगवान के सुमरण में लग जाओ, भगवान की सेवा में लग जाओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद कहते थे भगवान को देखने का इच्छा मत करो, भगवान के लिए काम ऐसे करो कि भगवान तुम्हें देखने आए कि कौन कौन मेरे लिए ऐसा काम कर रहा है। तो भगवान के लिए करुणा कृपा का उदय हो गया, कन्हैया बंध गया और मैया घर चली गई। बोला जाके दूसरा मक्खन निकाल लेती हूं, दूसरा रबड़ी तैयार कर लूंगी, अरे थोड़ी देर में इसको आके खोल लूंगी, ये तो मक्खन का भूखा है, मैं गोद में बिठा के इसको चूम लूंगी, ये तो चुप हो जाएगा। मैया तो चली गई अंदर, ग्वाल बाल और बलराम जी आए, कन्हैया को बंधा हुआ देखा। अरे कन्हैया तेरे को किसने बांधा है? बोला मैया ने बांधा। बलराम जी को ऐसे शेष का आवेश आ गया, कौन इसको बांधता है? यही तो नरसिंह का अवतार लेकर आया था, हिरण्याकश को चीर फाड़ दिया, और यही तो रामचंद्र के अवतार में आया, रावण को मार दिया, इसको बांधने वाला कौन है? यशोदा अंदर से कहती है, सारे अवतार मेरे घर में आने थे और कोई घर नहीं मिला, तू शेष, तेरा बाप महेश, ये गणेश सब इधर ही होंगे। अरे चुप करता है कि नहीं तो उखल में तेरे को ही बांध दूंगी। अरे और शेष क्या, बलराम जी का शेष चला गया। अब कन्हैया बोलता है, ऐसे करो, खेलना तो है ही, ये उखल को थोड़ा टेढ़ा कर दो, मैं आगे चलता हूँ, पीछे उखल घूमेगा और तुम हमारे पीछे नाचते चलो, हमारा आज प्रोसेशन निकालते। अब उखल को टेढ़ा कर दिया, कन्हैया आगे चला, कन्हैया की नजर पड़ी दो पेड़ों के ऊपर, दो अर्जुन नाम के पेड़, जो प्रजन्य महाराज के समय से उगे हुए थे और सारे ब्रजवासी उसकी पूजा करते थे, उनकी इच्छा पूरी होती थी, बहुत से उसके अंदर लाल लाल कपड़े बंधे हुए थे। कृष्ण ने कहा, ये ब्रजवासियों की इच्छा पूरी करते हैं, नाम इनका अर्जुन है, एक मेरा सखा अर्जुन तो अभी है ग्वाल बाल, एक भविष्य में अर्जुन मेरा सखा होगा जिसको गीता का उपदेश दूंगा, मेरा मित्र, और फिर पेड़ की जूनी में अच्छा नहीं लगता, इसका उद्धार करना चाहिए। और कन्हैया दोनों पेड़ों के बीच से गुजर गए, पीछे उखल अटक गया। उखल जो अटक गया, कन्हैया ने दोनों चरणों को स्पर्श किया पेड़ों को, दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे। कहते खल कोई खल, उखल का मतलब खल, खल का मतलब बदमाश, बदमाश भी कोई भगवान से चपक जाए, भगवान के पीछे चले तो बड़े बड़े काम कर सकता है। उखल ने दो पेड़ों को गिरा दिया, दो पेड़ गिरे, वहां छोटे बच्चे खड़े थे, दो पेड़ों से दो देवता निकले, दो देवता निकले, दोनों ने कृष्ण की प्रार्थना की, कहा कन्हैया आपको खोल दें। बोला आपको खोल कहां से आप दोगे, आपको पेड़ की जूनी से मुक्त किया मैंने, अब तुम जल्दी जाओ, मेरे पिताजी आने वाले हैं, डर जाएंगे। दोनों देवताओं ने कन्हैया की परिक्रमा की, कन्हैया ने उनको भक्ति का दान दिया, वो चले गए। नंद बाबा भागते हुए आए, आवाज सुन के नंद बाबा आए, देखा दो बड़े पेड़ों के बीच में कन्हैया बंधा हुआ उखल से। मुस्कुरा के नंद ने कहा, कहीं डर ना जाए, बच्चे को गोद में उठा लिया, गोद में उठाया और गांठ खोल दी, और गांठ खुल गई, और कहा किसने बांधा था? मैया ने बांधा था। कोई बात नहीं, मैया से बात नहीं करेंगे, चलो गौशाला में चलते हैं, तुम्हें भूख लगी है, तेरे को दूध पिलाता हूं। कन्हैया को गौशाला में ले गए, मिश्री मुख में रख के दूध पिलाया और कन्हैया को सुला दिया नंद बाबा ने। बोला ग्वाल बालों ने गांठ क्यों नहीं खोली? बोला वात्सल्य प्रेम से बंधी हुई गांठ सखा प्रेम से खुल नहीं सकती, और कोई नहीं खोल सका, नंद बाबा वात्सल्य प्रेम के थे, उनके हाथ से ये गांठ खुल गई। और अब रोहिणी माता और बलराम जी पयाए, कहा कि कन्हैया चलो, यशोदा मैया तुम्हारे को याद कर रही है, रो रही है। बोला नहीं चलूंगा, आज घर में नहीं जाऊंगा। अरे कहां सोएगा? बाबा के पास सोऊंगा, क्या खाएगा? दूध पीऊंगा। नंद बाबा ने देखा इसके हृदय में यशोदा के प्रेम को प्रकट करना चाहिए। नंद बाबा ने कन्हैया को गोद में उठा के एक हाथ में लाठी उठाई, तो कन्हैया तेरे को बांधा था ना तेरी मैया को, आज चलो घर में उसको दंडित, इतना नाम इतना कहा नहीं, कन्हैया गोद से कूदा और सीधा यशोदा की गोद में जाकर चपक गया, और मैया ने अपने बेटे को गोद से लगा दिया, स्तनपान कराया, और यशोदा रोने लगी। यशोदा रो रही है, कन्हैया कहता है मैया सुबह मेरे को रुलाती है, शाम को खुद रोती है। तब तक नंद बाबा यशोदा सब आ गए, फिर भोजन कर लिया। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, वो दो पेड़ कौन थे जिनका भगवान ने उखल बंधन लीला में उद्धार किया? तो सुखदेव महाराज कहते हैं, कुबेर के दो बच्चे, धन का कोषाध्यक्ष कुबेर, उसके दो बच्चे नल कुबेर और मणिग्रीव, और वो शंकर के अनुचर थे, शंकर के अनुचर थे, और गंगा जी जहां सब लोग पाप धोने जाते हैं, उस गंगा में स्त्रियों के साथ नवयुवतियों के साथ नंगन शराब पी के लाल आंखों से नहा रहे थे। नारद जी भगवान की इच्छा से वहां से गुजरे, स्त्रियों ने वस्त्र ढक के एक तरफ लज्जा से खड़ी हो गई। ये निर्लज ऐसे ही खड़े थे, नारद ने देखा देवताओं के पुत्र हैं, पवित्र गंगा में लोग अपना पाप धोने आते हैं, वहां पाप कर रहे हैं। ये प्रसंग कहते समय हमको लगता है आजकल ऋषिकेश से आगे कितने ऐसे नल कुबेर और मणिग्रीव जैसे लोग, लड़के लड़कियां रात को जाके वहाँ कैंप लगाते हैं, इतना गंगा के बीच में बैठ के कितना दुष्ट कार्य, शराब मांस सब कुछ हो रहा है, देखा है ये। अंदर बड़े बड़े टेंट लगते हैं, कैंप लगते हैं, फिर ऐसा जैसा केदारनाथ में हुआ ऐसे कैसे क्यों नहीं होंगे ऐसे काम। जहाँ पवित्र होने जाना चाहिए वहाँ पवित्र भाव से जाएगा तो विनाश नहीं होगा, तो और क्या होगा। नारद जी ने सोचा कि मेरे को क्रोध तो कहीं नहीं आ गया इनके ऊपर, तो नारद जी गाने लगे, और गाना जब चालू किया तो लगा क्रोध नहीं है, क्रोध में गाना नहीं आता। तो नारद जी ने कहा कि दोष चार हैं, सुंदरता का दोष है, नशा नशा है, उच्च कुल के जन्म का नशा है, उच्च विद्या का नशा है, और धन का नशा है। धन का नशा सबसे ज्यादा खतरनाक है, इन धन के मद में अंधे हो गए हैं ये। बोला इसका इलाज क्या है? बोला दरिद्रता इसका इलाज है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, इसका इनके अंदर से धरा दरिद्र हो जाएंगे तो इनको पता लग जाएगा। फिर नारद जी कहते हैं धनी लोगों को एक तो धन का अपमान होता है और अधिक धन कमाने की लालसा होती है। कोई साधु संत उनके पास जाते हैं तो कोई आदर वो करते नहीं है, उनसे वो मिलते भी नहीं है, घर में कुत्ता बांध के रखते हैं। लेकिन गरीब बेचारे के पास धन है नहीं तो नशा किसका होगा, केवल धन की इच्छा होती है, उनके पास साधु संत का आना जाना ज्यादा होता है, उनका उद्धार होना संभव है। तो इनको कहते हैं कि तुम दुष्ट बगैर वस्त्र के खड़े हो तो जाओ पेड़ बन जाओ, निर्वस्त्र हो तो पेड़ बन जाओ। अब दोनों को लज्जा आई, नारद के चरणों में गिर के कहते हैं कृपा करो हमारा उद्धार करो। बोला नहीं सर आप तो दे दिया, अब तुमको पेड़ बनना पड़ेगा, लेकिन पेड़ तुम नंदगांव में बनना, पेड़ पर तुम गोकुल में बनना, नंद के महल के बाहर बनना, कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करना, कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेगा। तो ये कुबेर के दो बेटे आज पेड़ बने थे, कृष्ण ने उनका उद्धार किया। इसके बाद सब गोपों ने एक मीटिंग की, कहा गोकुल के अंदर कृष्ण के ऊपर बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही, हमको ये शहर नगर छोड़ के चलना चाहिए। इसको कहते हैं कृष्ण प्रेम की परिकाष्ठा। एक बच्चे के, वो भी 3 साल 2 महीने का बच्चा है, अभी 4 महीने का होने वाला है, उस बच्चे के प्रेम के कारण उन्होंने अपना खेत छोड़ा, खलियान छोड़ा, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, गोकुल को ही छोड़ दिया, केवल अपनी चल संपत्ति गैया बैलगाड़ियों के ऊपर रखी और वहां से निकलने का संकल्प कर लिया। इस बीच में एक और लीला घटित होती है। एक मथुरा की ग्वालिन है, सर के ऊपर फल की टोकरी रखी है और गोकुल में आवाज लगाती आ रही है, फल ले लो, फल ले लो, केला ले लो, सेब ले लो, गोपाल ले लो, गोविंद ले लो। बेचारी को कृष्ण को देखने की इतनी इच्छा थी कि केला सेब भूल गई, गोपाल गोपाल ले लो। कन्हैया बोलता है फल तो मैं दुनिया को देता हूँ, भगवान फलदाता मैं हूँ, ये दूसरा फलदाता कौन आ गया कि फल दे रहा है और मेरे को ही बेच रहा है। तो ये ग्वालिन नंद के महल के सामने आई तो कन्हैया बाहर चला गया, बोला मैया फल दो। बोला कुछ लाओ, अनाज लाओ, घर से धान लेकर आओ। कन्हैया मुड़ के जाने लगा, मुड़ मुड़ के देखा मैया जाना मत, मैं आ रहा हूँ। अंदर गए, उठाया घर से धान चावल उठाया और बाहर आ रहा था छोटा सा बच्चा, चावल तो उंगलियों से गिर गया, 2-4 दाने बचे। मैया चावल ये लो धान, अब फल दे दे। मैया बोलती है पहले मेरे गोद में बैठो, मेरे को मैया कहो फिर दूँ। कन्हैया ने इधर उधर देखा कोई देख नहीं रहा है, कूद के मैया की गोद में चला गया, कहा मैया हाँ बेटा, कूद के नीचे आया, बोला फल दे। भगवान रामचंद्र जब वनवास जा रहे थे लक्ष्मण के साथ, सीता भी साथ में थी, श्रृंगेरपुर में निषाद राज गोहे के पास रुके थे। निषाद राज गोहा जब रामचंद्र का परिचय दे रहा था तो उनकी बूढ़ी माता की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरी माँ है। रामचंद्र ने उसको प्रणाम किया जैसे अपनी माता कौशल्या को करते हैं। तो उस बुढ़िया के मन में आया कि इसको गोद में बिठाऊं, मेरे को ये मैया कह दे। लेकिन फिर देखा ये तो 27 साल का है, अब इसको गोद में कैसे बिठा सकती हूँ। तो उसके मन में ये संकल्प आया था। आज भगवान ने उस गोहा की ये माँ आज ग्वालन बन के आज फल बेचने के लिए आई है। और कन्हैया ने उसकी इच्छा पूरी की, उसकी गोद में बैठा और उसने मैया कहा और कन्हैया को इतना सारा फल मिला। कन्हैया अंदर ले गया, फल देख के गोपियां अंदर यशोदा के पास बैठी थी, प्रसन्न होकर कहती इतना फल कौन दे के गया। बोला बाहर मैया ने दिया है। सबको फल बांटा, कन्हैया सो गया। गोपियां कहती है अभी तक तुम ग्वालन यहाँ क्यों बैठी है, कन्हैया तो सो गया। अरे कन्हैया सो गया। बेचारी टोकरी सर के उपाट उठाई, जमुना के किनारे आई तो टोकरी भारी लग रही है। नीचे उतार के देखा टोकरी को तो अंदर हीरा मोती माणक पड़ा है, ज्वाहर पड़ा है। भगवान को फल दिया और भगवान ने उसको धन दे दिया। लेकिन अब संसार का व्यक्ति होता तो खुश हो जाता, फल के बदले हीरा मोती मिला। ग्वालन ने टोकरी को जमुना में डाला, बोला कन्हैया मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कन्हैया चाहिए। और गोकुल की गलियों में कन्हैया कन्हैया करती घूम रही। अब सारे ग्वाल बाल अपना सामान, सारे ग्वाल बाल नहीं सारे गोप अपना सारा चल संपत्ति को बैलगाड़ियों के ऊपर रखा। चारों ओर से नौजवान गोप हाथों में डंडा उठा के रक्षा के लिए चले। बैलगाड़ियों के ऊपर स्त्रियां और बच्चे बैठे और बूढ़े बैठे, और गोकुल को विदा करके नमस्कार करके ये सब जमुना के किनारे आए। और जमुना के किनारे से रात को रुक गए, अर्धचंद्र में बैलगाड़ियों को खड़ा किया और फिर जमुना पार किया और आगे बढ़ने लगे। अब वहाँ से अब गोकुल छोड़ के आ गए। यहाँ तक भगवान की बाल लीलाएँ हैं, अब भगवान वत्स चारण लीलाएँ करेंगे। लेकिन जब आ रहे थे तो कृष्ण बलराम माताओं की गोद में पूछ रहे थे, ये पेड़ कौन सा है मैया? तो ये बरगद का पेड़ है। बोला इसकी बड़ी दाढ़ी है, ये तपस्वी है क्या? पेड़ उसकी जटाएं नीचे पड़ी थी। फिर कन्हैया कहता है, मैया वो क्या है बेटा? वो हिरन है। अरे वो कौन है, वो क्या है मैया? वो हिरनी है। ये क्या होता है? बोला ये इसकी पत्नी है। एक बूढ़ी 110 साल की बूढ़िया गोपी, दांत वांत कुछ नहीं थे, वो भी बेचारी एक बैलगाड़ी में जा रही थी। वो कन्हैया की ओर देख रहे मन में कर रही थी, मेरी गोद में बैठा नहीं, केवल यशोदा की गोद में बैठा है, मेरी गोद में बैठेगा कब? मैं तो अभी कितने दिन रहूंगी पता नहीं। और कन्हैया कहते हैं, मैया वो क्या है बेटा? वो बैल है। अरे वो क्या है मैया? गाय है। ये कौन है? इसकी पत्नी है। वो कौन है? मोर है। वो कौन है? मोरनी है। क्या लगती है इसकी पत्नी है? कन्हैया रोने लगा जोर जोर से, गाड़ियां सब रोक गई, बैलगाड़ियां रोक दी। सब गोपियों ने कन्हैया को कहा, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, क्या हुआ? बैल की पत्नी गाय, मोर की पत्नी मोरनी, हिरण की पत्नी हिरनी, मेरी पत्नी कहां? और सब गोपियां हंसने लगी, अरे कन्हैया तेरे को जो पसंद आए उसकी गोद में बैठ तेरी पत्नी बस। कन्हैया ऐसे घूमता घूमता उस बुढ़िया 110 साल की गोद में बैठा। अब सब गोपियां हंस रही है, कन्हैया तेने इसको क्यों पत्नी कर ली, क्या बात इसमें तुमको अच्छी लगी? बोला दांत मेरे भी नहीं, दांत इसके भी नहीं, हम दोनों एक जैसे, ये हमको बहुत प्रिय लगी। और ऐसे भगवान की वात्सल्य लीलाओं का 3.5 साल पूरे हुए। और जहां आजकल हम वृंदावन जाते हैं क्षति करा है, जहां से हम अंदर मुड़ते हैं यहां आके छकड़ों को खड़ा किया, बैलगाड़ियों को, इसके लिए इसका नाम क्षतिकड़ा हो गया। और यहां वृंदावन में 3.5 साल तक नंद बाबा रहे। और यहां पहली लीला भगवान ने 4 साल के हुए तो बछड़े चराने की। आज कृष्ण वत्सपाल हो गए और बछड़े चराने के लिए कृष्ण चले गए ग्वाल बालों के संग में। तो बंसी बट जो यमुना के दूसरे तरफ है, वहां एक बछड़े के रूप में असुर आया, वत्सासुर। कन्हैया पहचान गया, बलराम जी को कहा ये बछड़ा अपने गायों का नहीं है, उसको पांव से पकड़ा कन्हैये ने, घुमा के उसको पटका, वो मर गया, बड़े असुर जैसा शरीर उसका निकला। सबने कहा कन्हैया तुमने बछड़े को मार दिया, तुमको तीर्थों में स्नान करना चाहिए। अरे इतना बड़ा राक्षस है। बोला राक्षस है, आया तो बछड़े के रूप में था ना। तो कन्हैया ने वहां त्रिवेणी कूप बनाया। भांडिर वन में एक कुआं है, उस कुएं को त्रिवेणी कूप कहते हैं। भगवान ने सारे, त्रिवेणी का मतलब है प्रयागराज, त्रिवेणी तीन नदियां जहां इकट्ठी होती हैं, ये प्रयागराज के रूप में वहां भगवान ने उसमें स्नान किया। आज भी, अभी तो नहीं, कोई कुछ समय पहले उसमें सोमवार की अमास आती थी तो दूध जैसे प्रकट होता था, और आज भी लोग वहां सोमेत अमास को स्नान करने जाते हैं। कोई पुत्र नहीं होता है तो वहां जाके स्नान करते हैं, अभी भी भीड़ लगती है बहुत। तो भगवान ने वत्सासुर का वध किया। इसके बाद वत्स चारण लीला में सबसे मुख्य लीला है, बछड़े चराने के लिए जाते थे, दोपहर को घर में आते थे, भोजन घर में करते थे। आज कन्हैया ने सबको कहा कल हम वन में भोजन करेंगे। अपनी मैया को कहा अच्छे से अच्छा कुछ भोजन बना दे, और कल हम वापस नहीं आएंगे, आज कल पिकनिक करेंगे जंगल में जमुना जी के किनारे पे। सबने अपनी माताओं को कह दिया कि अच्छे से अच्छे आज हमारे को लड्डू कचोरी बना दो। सबकी मैया ने सुंदर बनाया। मधु मंगल ब्राह्मण है, उसने अपनी माँ को कहा पूर्णमासी कुछ बना दे। बोला हमारे से कुछ नहीं बनता, तू ब्राह्मण का बच्चा है, तेरे को अपने आप सब खिलाएगा। वो बेचारा कुछ फूल ऐसे ही पोटली में बांध लिए उसने। सुबह सुबह पहले कृष्ण उठा सबसे पहले, और सिंह बजा के सबको जगाया, सब ग्वाल वाल जाग गए। अच्छा लीडर वो है जो पहले जागता है। आजकल का लीडर सब काम तैयार होता है फिर कहते हैं मुझे बुलाना। कन्हैया पहले उठा, सबको जगाया, सबने अपनी माताओं से टिफिन लिया, लाठी में टिफिन को बांध दिया, अपने बछड़ों को आगे करके और वन की तरफ चले। श्री धामा की माँ ने बहुत सुंदर बेसन के लड्डू बनाए थे, खुशबू आ रही थी, और मधु मंगल लंबा है, उसके पास कुछ नहीं था, वो तो फूल लेके आया था, वो उसका लड्डू निकाल के अपनी झोली में डाले, उसकी झोली में फूल डाल दे। और जब वन में पहुंचे तो खेलने लगे आपस में, कोई किसी का टिफिन उधर फेंके, कोई किसी का टिफिन इधर फेंके, और जब थक गए तो कन्हैया एक पेड़ के नीचे सो गया, लेट रहा था। तब ग्वाल बालू ने एक आश्चर्य देखा, एक बहुत बड़ी गुफा उनको दिखाई दी। उन्होंने कहा रोज हम यहां आते हैं, गुफा नहीं है, कहां से गुफा आ गई। देखा दो जैसे पहाड़ों की बड़ी श्रृंखलाएं हैं, ऐसी श्रृंखलाएं पड़ी है, और बीच में कोई लाल लाल रोड बना हुआ है। नजदीक गया, बोले इसके अंदर चल के देखते हैं क्या है। तो ग्वाल वाले एक ने कहा पता नहीं क्या है, कहां जाएंगे। दूसरा कहता कन्हैया है ना, चिंता क्यों करते हो, चलो अंदर चले। कौन था ये? अघासुर। एक गांव है ब्रज में, उसको कहते हैं सपोला गांव, वहां ये अघासुर आया था, मुंह खोल के बैठा था, और ग्वाल बाल उसके अंदर चले गए। कन्हैया कह रहा है रुको रुको रुको, सुना नहीं। ग्वाल बाल तो अग कहते हैं पाप को, अग का अर्थ है पाप, और पाप के मुंह में चले गए सब। कन्हैया भागता हुआ गया ग्वाल बालों के साथ, अघासुर मुंह खोल के बैठा था उसके मुंह में चला गया। पूतना का भाई है अघासुर, अपनी बहन का बदला लेने के लिए आया था। कृष्ण आएगा मुख में तो इसको मैं मुंह बंद करके मार दूंगा। ग्वाल बाल तो मूर्छित हो गए अंदर उसके विष के प्रभाव से। कन्हैया जैसे अंदर गया उसने मुख बंद कर दिया, और कन्हैया उसके गले के अंदर जाके ऐसे गले का बंद कर दिया, उसका सांस बंद हो गया, उसका दिमाग फट गया, और उसकी खोपड़ी फट गई, और कन्हैया बाहर निकला। ग्वाल बाल सब बाहर आए, और ग्वाल बालों को भगवान ने अमृत दृष्टि से वापस, नींद से जैसे बच्चे जागे ऐसे जाग गए, और सबने देखा कि अघासुर की आत्मा कृष्ण के चरणों में प्रवेश किया। ये देख के आकाश में यमराज मूर्छित हो गया, बोला इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी इसको मुक्ति मिली है जो जोगियों को नहीं मिलती है। बड़ा उत्सव होने लगा स्वर्ग में, और यहां ग्वाल बाल सारे कहते हैं कन्हैया बहुत देर हो गई, भूख लग गई है, भूख लग गई है, चलो भोजन करें। सब जमुना जी के तट के ऊपर आए। कन्हैया बीच में बैठ गया, आठ छोटे ग्वाल चारों आठों चारों तरफ बैठ गए, फिर 16 ग्वाल बैठ गए, फिर 32, फिर 64, ऐसे पंक्ति बन गई। कन्हैया बीच में बैठा है, सबने अपना टिफिन खोला। अरे मेरी माँ ने कचौरी कन्हैया बहुत अच्छी बनाई है, खाई उसने? कन्हैया तुम भी थोड़ी टेस्ट करो। मधुमंगल कहता है ब्राह्मण को नहीं खिलाते हो, आपस में खाते हो, मेरे को पहले दो, और झपट के बीच में से ले जाता है। वो एक मुंह में खाता है, दूसरा लेता है। ऐसे बच्चे ले रहे हैं, कोई बर्तन नहीं है, कन्हैया के हाथ में दही और चावल है, उंगलियों के बीच में अचार लगा हुआ है। आवाज सुन के ब्रह्मा जी अपने लोक में कहते हैं, कौन सा उत्सव है स्वर्ग लोक में, मुझे बुलाया नहीं, क्या हुआ है? ऊपर देखता है, आश्चर्य लगता है, नीचे आके देखता है, अघासुर का उद्धार हो गया। फिर एक ये 4 साल का बच्चा हाथ में दही भात लिया हुआ है, बर्तन है नहीं, ग्वाल बालों को खाने वाला जूठन खा रहा है। क्या ये भगवान है जिसको हम यज्ञ में बुलाते हैं, बड़ी पवित्रता के साथ पूजा करते हैं, तब तो आता नहीं है, और यहाँ ये खा रहा है? क्या ये भगवान है? कौन सी इसकी और लीला है, मैं देखना चाहता हूं। ब्रह्मा जी के मन को विमोहित हो गया कृष्ण के इस लीला से, और कृष्ण की और अद्भुत लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया, बछड़े चुरा लिए ब्रह्मा जी ने, और ग्वाल बाल कृष्ण को देख रहे थे, तब तक आनंद था। कृष्ण से नजर हटी और कहा, अरे हमारे बछड़े कहां गए कन्हैया? नजर हटी, दुर्घटना घटी। यशोदा की नजर कृष्ण से हटी, दूध की तरफ गई, दुर्घटना हो गई, मटका फूट गया। ग्वाल बालों की नजर कृष्ण से हटके बछड़ों की तरफ गई, कन्हैया ने बोला तुम भोजन करो, मैं जाता हूं बछड़े ढूंढने। ग्वाल बालों को छोड़ के कन्हैया गया, जंगल में बछड़े कहीं नहीं मिले। कन्हैया वापस आया तो ग्वाल बाल गुम। कन्हैया ने देखा ये ब्रह्मा जी ने मेरे बछड़े और ग्वाल बाल चुरा लिए, तो वो मेरी लीला देखना चाहता है। तो कौन सी लीला करनी चाहिए जिससे ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाए? तो जो उसको काम अच्छे से अच्छा करना चाहता है वही काम करके देख लो। मैं वो सृष्टि करता है, वो सृष्टि करता है जब मैं उसको आत्मा देता हूं, जब मैं उसको कर्म देता हूं, जब मैं उसको 24 तत्व देता हूं, तब सृष्टि करता है। मैं आज ऐसी सृष्टि करने जा रहा हूं, ग्वाल बाल बनाऊंगा, बछड़े बनाऊंगा, लाठी बनाऊंगा, टिफन बनाऊंगा, बांसुरी बनाऊंगा, कोई जीवात्मा की जरूरत नहीं, मैं अपने आप से अनेक हो जाऊंगा। आज जितने बछड़े थे वो कृष्ण बन गया, जितने ग्वाल बाल थे वो कृष्ण बन गया, लाठी भी कृष्ण बन गया, टिफन भी कृष्ण बन गया, सब कुछ एक बन गया। और ये सब लौट के वापस आए, सब माताएं आज कहती हैं हमारा बेटा कितना अच्छा लग रहा है, उसको चूम रही हैं, गैया अपने बछड़ों को प्रेम से दूध पिला रही हैं। ये कृष्ण ने सब माताओं की इच्छा पूरी की, सबका बेटा बन के सबको दूध, सबका दूध पिया आज, क्योंकि आज कृष्ण ही बछड़ा ग्वाल बाल बना हुआ है। सब माताओं की ये इच्छा थी ब्रज में, सब गायों की ये इच्छा थी, कृष्ण आज बछड़ा बन गया, सब गायों का दूध पी रहा है। छोटी गोपियां जो थी वो कहती थी कि कृष्ण हमको पति के रूप में मिले, तो सांडल्य ऋषि ने आज घोषणा कर दी कि इस वर्ष में इस मुहूर्त में जो अपने लड़कियों की शादी कर देगा वो सदा सुहागन रहेंगी। तो सब लड़कियों की शादी ग्वाल बालों के साथ कर दी जो कृष्ण था, तो ग्वाल बाल तो सब चोर के ब्रह्मा जी के पास पड़े थे, वो तो चोरी करके ले गया था, ये तो कृष्ण ही था। तो शादियां किसके साथ सबकी हुई? कृष्ण के साथ। इसलिए कृष्ण वधव, इसलिए रासलीला में गोपियों को कृष्ण वधव कहा गया, कृष्ण की वधु, मतलब जिसके साथ विवाह किया है। कब किया है? जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे। तो ये 3 लीलाएं भगवान को साथ में करनी थी। बलराम जी इस दिन गए नहीं थे बछड़े चराने, क्यों नहीं गए थे? उसका नक्षत्र था जन्म का, माँ ने घर में रोक दिया था। बोला क्यों रोका था? भगवान ने जब सांप के साथ लीला करनी होती है तब बलराम जी नहीं जाते, क्योंकि सांप बलराम जी के सामने आएगा नहीं। आज 1 साल हो गया, बलराम जी देखता है गायों ने दूसरे बछड़े दे दिए, ये बड़े बछड़े चराने के लिए ले गए हैं, और गोवर्धन से गायें भागती हुई बछड़ों की तरफ आ रही हैं, ग्वाल रोक नहीं पा रहे। ग्वालों को क्रोध आ गया कि यहां बछड़े क्यों लाए, लेकिन जैसे बच्चे गए ग्वाल उसको चूम रहे हैं, गैया बड़े बछड़ों को दूध पिला रही है, छोटे घर में खड़े हैं। बलराम जी कहता है ये क्या आश्चर्य। तो बलराम जी देखते हैं सब चतुर्भुज रूप है, बछड़ा भी कोई नहीं, ग्वाल बाल भी कोई नहीं। कन्हैया को पूछता है ये क्या है। कन्हैया बोलता है ये ब्रह्मा जी बछड़े ले गया, ग्वाल बाल ले गया, ये मैंने बनाए। अभी ब्रह्मा जी बेचारा अपने धाम जा रहा था तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी चला गया सत्य लोक में, तो वहां का एक दिन यहां के 6 महीने, ब्रह्मा जी का नहीं स्वर्ग का एक दिन हमारे 6 महीने, स्वर्ग का दिन रात हमारा साल। तो ब्रह्मा जी का दिन अगर ब्रह्मा जी का एक सेकंड भी हो गया तो यहां तो युग बीत जाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहीं वहां घर चले गए तो फिर तो मेरे को सारी उम्र घास खाना पड़ेगा यहां। तो भगवान ब्रह्मा जी बन के बैठ गए सत्यलोक में और कहा एक नकली ब्रह्मा आए तो धक्के देके भगा देना। ये ब्रह्मा जी जैसे आए तो कहते महाराज अंदर बैठे तुम कहां से आए, चलो। ये बेचारा वापस आया, इसके बीच में 1 साल बीत गया। इस सेकंड एक सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में साल बीत गया। ब्रह्मा जी वापस आके देखें तो कन्हैया ग्वाल बाल और बछड़े हैं, फिर जहां छुपा के रखे थे वहां जाके देखे तो वहां भी है। अरे 2 सेठ कहां से आ गए। भगवान ने थोड़ी कृपा की, ब्रह्मा जी ने देखा जो कृष्ण के साथ बछड़े और ग्वाल बाल है सब चतुर्भुज रूप में। अब ब्रह्मा जी असली ग्वाल बाल और बछड़े लाए, कन्हैया को प्रणाम किया और बहुत सुंदर स्तुति किया। और तब तक ग्वाल बालों के हाथ में रोटी पड़ी थी, वो वहीं बैठे थे, वहीं टिफिन पड़े थे, ऐसे का ऐसे पड़ा था। ये लोग घर में लौट के आए, कहा कि हमारे कन्हैया ने आज एक बड़े असुर अघासुर को मारा। और वहां जाके देखें तो अघासुर का सारा शरीर सूख गया था। 1 साल बीत गया, अब बच्चे ये 5 साल के हो गए। अब कन्हैया नंद बाबा को कहता है बछड़े चराते हुए मुझे लज्जा आती है, मैं बड़ा हो गया हूं, गैया चराने जाऊंगा। इसको हम जब सुनते हैं तो कहते हैं पुराने जमाने में बेटे 5 साल के होते थे, बाप के सेवा में काम में हाथ बटाते थे, जो बाप काम करता था वही काम करते थे। तो 15 साल तक बाप का सब काम समझ जाते थे, बाप को आराम मिल जाता था। और लड़कियां माताओं की सेवा करती थी, किचन में माताओं को सहारा मिल जाता था। अब आजकल के ना लड़का बाप का काम करता है, बाप आखिरी दम तक मरता रहे तो काम उसको ही करना है। लड़की किचन में जाएगी नहीं, माँ ने नहीं पकाया तो बाहर से बर्गर खा लेगी लेकिन पकाएगी नहीं। ये बड़ा दुख से कहना पड़ता है लेकिन भगवान की लीला से ये सीखना चाहिए। तो भगवान इसके बाद गोपाल हो गए, टाइम तो हो गया है आज का मेरे ख्याल में। हरे कृष्णा, बस ये इतनी लीला को पूरा कर देते हैं, फिर आरती करते हैं। कल वैसे भी पूर्ण आहुति का दिन है, हमको काफी कुछ ज्यादा कथा करनी पड़ेगी, जितना संभव होगा यथाशक्ति यथामति। तो नंद बाबा ने कहा बड़ी बड़ी गैया बड़े बड़े बैल कन्हैया तुम कैसे संभालोगे। कन्हैया ने बांसुरी बजा निकाली, टेढ़ा खड़े होके बजाया, सब गैया पूछ ऊपर करके खड़ी हो गई, बैल खड़ा हो गया। तो बोला मुहूर्त तो निकालना पड़ेगा गैया चराने के लिए। बोला मुहूर्त निकाला, तब तक सांडल्य ऋषि घर में आ गए। बोला क्या भाई बेटा क्या कह रहा है। बोला बेटा कह रहा है गैया चराएगा, मुहूर्त निकालना है। सांडल्य जी अंदर से पंचांग निकाल के कहते हैं ये गोपाष्टमी आ रही है, बहुत अच्छा मंत्र, कल मुहूर्त है बहुत अच्छा। नंद बाबा कहता है गुरु शिष्य दोनों मिले हुए हो, अभी इतनी देर नहीं है, कहीं छोटा बच्चा है, हम कहते हैं बाहर जाएगा कहां, सारा दिन गायों के पीछे जाएगा। अब मुहूर्त निकल गया तो नंदगांव और बरसाने के बीच में बहुत बड़ा एक टेंट लगा दिया गया और उसके अंदर रात सारी ग्वाल बालों ने अपने गायों को श्रृंगार किया, लाल रंग लगाया, सिंगों को रंग लगाया, गायों के ऊपर शुभ चिन्ह लगाए, बड़े बड़े सुंदर कंठ में मालाएं पहनाई। फिर देर से आके बच्चे सो गए, सुबह सवेरे उठ के 5 बजे नहा धो के और गैया चराने के लिए तैयार होने लगे। तो मैया यशोदा ने कृष्ण को बहुत सुंदर श्रृंगार कराया, फिर हाथ के ऊपर नजर न लगे तो अच्छा एक काला धागा बांधा और फिर 2 चप्पल की जोड़ी लाके जूते रख दिए। कन्हैया तू बहुत दूर जंगल में जाएगा, कांटा न लगे, कंकर पत्थर न लगे, तो ये दो चप्पल पहन के, बूट पहन के जा खड़ा हूं। कन्हैया ने बोला, मैया हमारी गैया के लिए कहाँ है बूट? 9 लाख गैया, तो 18 लाख पेयर बूट्स के चाहिए। कन्हैया गैया तो जानवर है, पशु है, वो को जूता थोड़ी पहनती। कन्हैया ने ऐसे सारा श्रृंगार फेंक दिया, गैया को पशु क्यों कहती है, गैया पशु नहीं है, गैया हमारी मैया है। रोने लगे कन्हैया। मैया कहती है, कन्हैया गैया को पशु नहीं कहूंगी, गैया हमारी मैया है। ये समाचार गायों को मिल गया। गायों को पता लगा कि कन्हैया कहता है कि गैया अगर जूता नहीं पहनेंगी तो मैं भी जूता नहीं पहनूंगा। गैया सारी अपनी गौशाला को तोड़ के पूरे ब्रज के अंदर चली गई, अपने खुर से कूट कूट के पत्थरों को पीस पीस के चूरण कर दिया। कहा कि कन्हैये के कांटा न लगे, कंकर न लगे, इसलिए जो गौ रज, जो ब्रज रज है, ये गायों के खुरों से बहुत पीसा हुआ कन्हैये को बहुत प्रिय है। आज कन्हैया गोपाल हो गया और गैया चराने को हो गया। कल तक वत्सपाल था, आज गोपाल हो गया। अब कन्हैया गैया चराने गया तो कालिये का उद्धार करेगा। और फिर कन्हैया गोवर्धन धारण करेगा और फिर गोपियां वेणु गीत गाएंगी और तब कृष्ण भगवान देवताओं को अनुकूल करेंगे गोवर्धन उठा के, ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा ब्राह्मणों को अनुकूल करेंगे और फिर नंद बाबा और बड़े गोपों को, नंद बाबा को वरुण लोक से वापस लाके अनुकूल करेंगे। तब भगवान रास लीला का 5 अध्यायों में गोपियों का मनोरथ पूरा करेंगे और उसके बाद भगवान 3 असुरों को मारकर वृंदावन से मथुरा चले जाएंगे। वो 3 असुर है, केसी, वृषभासुर और वैमासुर, और फिर भगवान मथुरा चले आएंगे। तो ये लीलाएं कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।